उनकी आदत थी कि वो हमेशा दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे और सुनने वालों पीछे बैठना पड़ता था, वो तो उनकी तरफ मुंह करके रहते थे। चीन का सम्राट उससे मिलने आया तो वो तो अपनी दीवार की तरफ मुंह के बैठा हुआ, सम्राट पीछे बैठा, उसने कहा ये कौन सा ढंग है, कृपा करके इस तरफ मुंह करिए। उसने कहा कि बहुत अनुभव के बाद दीवार की तरफ मुंह करना सीखो। सम्राट पीछे में मतलब नहीं सोचा। उसने कहा आदमियों की भीड़ में मैंने दीवार ही देखी और तब बड़ी नाराज की आती थी, तो फिर मैं दीवार की तरफ मुंह करके बैठा। अब नाराज भी नहीं होता, मुझे दिवाली है आखिर यानी अब तो दिवाली है, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन आदमी जब दीवार की तरह मालूम करते हैं तब बड़ा कष्ट होता है। वो जिंदगी भर दीवार की तरफ मुंह करके ही बोलता रहा। उसने सम्राट से कहा कि मैं तुम पर दया करके इस तरफ मुंह किया, ये तो मैं बड़ा नाराज हो
जाऊंगा
क्योंकि आदमी को दीवार मानने में कष्ट होता है और भीड़ तो बिल्कुल ही दीवार है, वहां कोई है ही नहीं जो आपको सुन रहा है, समझ रहा है, जो आपसे जुड़ रहा है। और आप किससे बोल रहे हैं, किसी से नहीं बोल रहे, आप खुले आकाश में बोल रहे हैं, भीड़ सुन रहे हैं, तो बोला तो जा सकता है निकट ही। और भी बड़ी कठिनाई है क्योंकि जो हम बोलते हैं वो बोलने वाले पर ही निर्भर नहीं होता, वो आधा तो सुनने वाले पर निर्भर होता है। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा जयराज जी से वो आधा उन पर निर्भर होगा, और विजय जी से क्या बोलूंगा वो आधा उन पर निर्भर होगा, वो मुझसे क्या निकलवा लेंगे, वो मुझे किस कोने में खड़ा कर देंगे कि मुझे क्या कहना पड़ेगा, ये उन पर निर्भर। भीड़ कुछ नहीं निकालती, भीड़ कुछ निकाल नहीं सकती। तो एक एक व्यक्ति के एनकाउंटर में हूं कुछ अर्थ है।
अर्जुन नहीं होते तो शायद कृष्ण जी का उपदेश ही कोई और
कठिन होता, कुछ और ही होता अर्जुन के बिना, और ही होता। वो अर्जुन ही है जो उस उपदेश को खींच देता है, यानी ऊपर से ऐसे दिखता है कि बोलने वाला बोल रहा है, इतनी सरल बात नहीं, सुनने वाला भी बुलवा रहा है, तो निकाल रहा है। वो क्या निकाल सकता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। और भीड़ में कोई भी नहीं है वहां, इधर मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि दिन रात भीड़ ही भीड़ में हूं, और भीड़ के पास ना आत्मा होती ना आंख होती। एक एक व्यक्ति से सीधे आमने सामने बात करने का जो रस और मजा है वो बात है, लेकिन आमतौर से नेतागण गुरुजन सीधे बात नहीं करना पसंद करते, सीधे बात करना पसंद नहीं करते,
सोचने वाले आदमी को पसंद नहीं करते,
सोचने वाले आदमी को भी बर्दाश्त नहीं करते।
अच्छा,
हाँ वो भीड़ ही चाहते हैं क्योंकि भीड़ बिल्कुल मशीन है, भीड़ से कोई डर नहीं, भीड़ खंडन नहीं करती, भीड़ उलट जवाब नहीं देती, भीड़ से कोई टक्कर नहीं, कोई चुनौती नहीं, भीड़ उधर खड़ी है, डेड मास है, आप बोले चले जा रहे हैं, जो आपको बोलना है जो कहना है आप कहे चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं तो जिंदा आदमी है और वो आपको कुछ भी नहीं बोलने देगा, वो टोकेगा भी, गलत भी कहेगा, लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी। और जब दो व्यक्ति बातचीत करेंगे तो उनमें एक बोलने वाला दूसरा सुनने वाला ऐसा नहीं रह जाता, वो दोनों बोलने वाले होते हैं, दोनों सुनने वाले होते हैं, और उसमें ऐसा नहीं होता कि एक सत्य जानता है और दूसरा नहीं जानता, उसमें दोनों के संघर्षों से सत्य निकलता है। लेकिन गुरु को ख्याल होता है कि सत्य मेरे पास तो मुझे देना है, निकालने का सवाल तो दे देना है, तो आप चुपचाप ले लो, रास्ते पहुंचा। इसलिए आमतौर से धर्मगुरु हैं, नेता हैं, भीड़ को चलाने वाले लोग हैं, व्यक्ति को पसंद, व्यक्ति के साथ डर जाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लोग बड़ी बड़ी भीड़ को भी प्रभावित करते हैं वे छोटे से व्यक्ति से घबरा जाएंगे, कब जाएंगे। हिटलर जैसा आदमी लाखों लोगों को कपाएगा लेकिन अकेले कमरे में एक आदमी के साथ नहीं बैठ सकता घंटे घंटे भर, इतना डर जाएगा। शादी नहीं की हिटलर ने मरने के दिन तक, सिर्फ इसीलिए कि और किसी को तो कमरे के बाहर रोक सकते हैं लेकिन एक औरत तो जिससे शादी कर लेंगे वो कमरे में सांस हो, और सांस होने से इतना डर लगता है एक आदमी, क्यों, क्योंकि भीड़ में आदमी
अपने आप को खो देता
है ना। भीड़ में नेता जो है वो अपने को व्यवस्थित कर लेता है, वो जैसा दिखाना चाहता वैसा हो जाता है, लेकिन 24 घंटे थोड़ी पोज कर सकते हैं, 24 घंटे में तो मुश्किल हो जाएगी, तो मर जाओ। तो हिटलर किसी को दोस्त नहीं माना जिंदगी भर, उसके जो उसके साथ थे वो कहते थे या तो उसके तुम दुश्मन हो सकते थे या उसके अन्यायी हो सकते हो, दोस्त होने का कोई उपाय नहीं, कोई उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सकता है और कोई उसके पास जाते हुए नहीं बैठ सकता है। वो हमेशा मंच पर होगा, आप हमेशा मंच के नीचे होंगे, साथ होने का उपाय नहीं, नेता छोड़ते नहीं उपाय। हाँ वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता जो
नेतागिरी ना चले,
हाँ वो सब चला जाए। व्यक्ति से सीधा उलझना बहुत कठिन बात है और एक छोटा से छोटा आदमी इतना अद्भुत आदमी है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन भीड़ में कोई भी कोई नहीं, वो तो नो बडीनेस है, कोई भी कोई नहीं वहां बेधड़क वो नहीं समझते। इधर मुझे तो निरंतर ऐसा लगता रहा है कि सीधा एक एक व्यक्ति से बात तो मुझे तो उसका कुछ अर्थ है, कम्युनिकेशन है, संवाद है, कुछ इसलिए तय किया है।
आचार्य जी आप तो बहुत घूमते हैं सर, आपको लगता है कम्युनिकेट करना आसान है इंडिविजुअल्स के साथ, वो स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस है कंट्री में, ये बहुत ही रेयर होती है अकरंस, हमें अपने यहाँ काम में पेशे में शहर में लगता है कि किसी इंटेलिजेंट आदमी से मिलकर एक अजीब खुशी होती है, तो बड़ी कम वो खुशी मिलती है कि बात करते हैं जैसे दीवार दीवार से टकरा कर। आपको आज इस देश में इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड क्या लगता है?
बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम होने का कारण ये नहीं है कि बुद्धिमान लोग मुल्क में कम हैं, असल में बहुत गलती हो गई, शिक्षित आदमी बुद्धिमान समझा जा रहा है, इसलिए दिक्कत हो गई और हम उसी में खोजते हैं बुद्धिमान को, एजुकेटेड को और इंटेलिजेंस को हम एक साथ इकट्ठा माने हुए हैं, कोई आदमी शिक्षित है ठीक से डिग्री है उसके पास तो वो बुद्धिमान होगा, ये जरूरी नहीं
है,
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, या ना ये नहीं डिग्री जरूरी नहीं, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि डिग्री होने से आदमी इंटेलिजेंट है ये जरूरी नहीं है, बल्कि सच ये है कि डिग्री पाने का हमारा जो रास्ता है उसमें इंटेलिजेंट आदमी पिछड़ जाएगा, स्टूपिड आगे हो जाएगा,
हाँ।
हमारा जो रास्ता और जो ढंग, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा बहुत गहरे में स्मृति की परीक्षा है, बुद्धिमत्ता की नहीं,
रट लिया
और बुद्धिमान, हाँ और बुद्धिमान आदमी जो है वो बहुत जल्दी भूलता है और बुद्धिहीन आदमी जो है वो कुछ चीजों को पकड़ लेता है और कभी नहीं
पकड़
लेता, और पकड़े इसलिए रखता है कि नया को समझने का तो उपाय नहीं है, यही उसकी संपत्ति है। बुद्धिमान आदमी समझता है और छोड़ देता है, क्योंकि क्या पकड़ना है, कल जब फिर सामना होगा जिंदगी का तो फिर बुद्धिमत्ता काम कर लेगी, तो बुद्धिमान स्मृति इकट्ठी नहीं करता, बुद्धू स्मृति इकट्ठी करता है, और स्मृति की जो प्रशिक्षण है उसमें हम खोजने जाते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी कहाँ है, तो शिक्षित आदमी जरूरी रूप से बुद्धिमान आदमी नहीं है, लेकिन अगर हम ये भ्रम छोड़ दें और सहज आदमी में खोजने चले जाएं तो बहुत बुद्धिमान लोग दिखाई पड़ेंगे, कभी गांव में एक निपट गंवार जिसको हम कहेंगे वो बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन हमारे जो मेजरमेंट है उनमें हो सकता है वो न पकड़ में आ सके, क्योंकि हमने मेजरमेंट गलत बना रखे, इसमें उसकी गलती नहीं। बुद्धिमत्ता तो बहुत है, लेकिन शिक्षित होने को बुद्धिमत्ता समझे तो फिर कठिनाई हो जाती है, और वैसे आदमी से, क्योंकि बुद्धिमत्ता के भी बहुत रूप हैं, अक्सर ये होता है कि जो मेरी बुद्धिमत्ता है वैसे आदमी को मैं बुद्धिमान समझ पाता हूं, और बुद्धिमत्ता की बहुत दिशाएं, बहुत आयाम, डायमेंशंस बहुत, यानी बुद्धिमत्ता कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि वो एक ही तरह की होती है। अब एक पेंटर है, उसके पास एक तरह की विजडम, उसके पास एक तरह की बुद्धिमत्ता है, और हो सकता है अगर गणितज्ञ से उसकी मुलाकात हो तो गणितज्ञ समझे कि आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, हाँ, क्योंकि गणितज्ञ के पास एक तरह की बुद्धिमत्ता है जहां दो और दो चार ही होते हैं, जहां सब बंधा हुआ फिक्स्ड है। पेंटर की बात बहुत अलग है, वान गाग का एक चित्र है जिसमें उसने दरख्त इतने बड़े बनाए हैं कि चौखटे के पार निकल गए हैं, पेंटिंग छोटी पड़ गई है और पेंटिंग का आकाश भी छोटा पड़ गया और दरख्त के पार चले जा रहे हैं और सूरज वगैरह ऐसे छोटे छोटे से कोने में पड़े हैं जिनका कोई हैसियत नहीं, एक मित्र उसे देखने आया और उस मित्र ने कहा कि क्या पागलपन, दरख्त इतने बड़े और सूरज इतना था, इसमें कोई गणित भी तो है, ये कैसा गणित, दरख्त इतने बड़े सूरज इतना था। तुम्हें कुछ प्रोपोर्शन का अनुपात का ख्याल नहीं, अनुपात की जो भाषा है वो गणित की भाषा है, प्रोपोर्शन की जो बात है वो गणित की भाषा है। तो उस चित्रकार ने कहा मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं और सूरज ने कोई गणित से सहमत होने का ठेका ले लिया। मैंने तो कुछ और ही बात चित्रित की है, गणित से इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा आदमी ने पूछा और क्या चित्रित किया, दरख्त है। कि नहीं, मैं दरख्तों को कभी भी ऐसा नहीं देख पाया, हाँ, मैं उनको दरख्तों को सदा ऐसे ही देख पाया हूँ कि वो पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छूने की। दरख्त जो है वो पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं आकाश को छूने की, एम्बिशन से पृथ्वी की। तो पृथ्वी अभी तक नहीं जीत पाई, लेकिन हमें क्या बात है, वो जिता देते हैं हम आकाश को। ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है, इसको इसको वो गणित वाला कहेगा ठीक है, फिजूल हुआ, क्या नापना था, तौलना था। नाप और तौल की एक दुनिया है, वहां की एक बुद्धिमत्ता है, लेकिन एक और तरह की बुद्धिमत्ता होती है। अब एक संगीतक है, उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता है। एक तार्किक है, उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता है। एक प्रेमी है, उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता है। और एक किसान है, उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता है। एक मिट्टी खोदने वाला है, उसकी और तरह की बुद्धिमत्ता है। लेकिन असल सच बात यह है कि जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बुद्धिमत्ताएं हैं। और हम जब भी तौलने जाते हैं तो हमारी बुद्धि को हम कसौटी बना लेते हैं, वो दूसरा आदमी उस कसौटी पे नहीं बैठता, क्योंकि वो दूसरा आदमी हमारा जैसा नहीं है। तब कठिनाई हो जाती है। एक मुझे बहुत प्रीति कर रहा है हमेशा एक फकीर है, उस पर गांव के लोगों ने राजा को इल्जाम लगा दिया और कह दिया कि जो फकीर है ये नास्तिक है, अधार्मिक है और इसके बोलने पर रुकावट डालनी जरूरी है, सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो राजा ने उस फकीर को बुला लिया और उस फकीर ने कहा कि किसने तुम्हें ये खबर दी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि नास्तिकता, अधार्मिकता, तौलने का मापदंड कहाँ है। मैं तो उसकी खोज कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाए तो मैं भी उस तरह जी पर बैठ कर अपने को तौल लूं कि मैं आदमी धार्मिक हूँ कि अधार्मिक। कहा किसने? उसने कहा कि मेरे ये पंडित बैठे हुए, इन्होंने कहा। तो उसने कहा इन पंडितों से इसके पहले कि मैं अपनी जांच करवाऊं एक छोटा सा सवाल पूछ रहे थे। पंडित तैयार हो गए, ऐसे पंडित हमेशा तैयार होते ही रेडीमेड ही हो, कुछ उसके पास कुछ ऐसा नहीं होता कि वो किसी चीज का मुकाबला करता हो, उसके पास चीजें तैयार होती, मुकाबला सिर्फ बहाना होता, कुटियां होती जिन पर जो उसके दिमाग ने सदा से तैयार कर रखा वो सामने। वो तैयार हो गए, उस फकीर ने कागज उनको दे दिया और कहा कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं, तुम सब उत्तर दे दो। उन्होंने सोचा कोई कठिन प्रश्न पूछेगा, और मजा ये है कि सब कठिन प्रश्नों के उत्तर तैयार है, सरल प्रश्न मुश्किल बात है, क्योंकि उसका उत्तर कहीं लिखा होता नहीं, क्योंकि सरल सवाल। तो उस फकीर ने बड़ा सरल पूछा, उसने पूछा व्हाट इज ब्रेड, रोटी क्या है। उन्होंने सोचा था पूछेगा ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, प्रेम क्या है। ये कैसा गंवार आदमी आ गया कि पूछता रोटी क्या, ये भी कोई सवाल, ये कोई तत्वज्ञान। उन्होंने कहा ये भी कोई सवाल। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ना समझ आदमी हूं, मैं कैसे सरल सवाल पूछ सकता हूं, आपकी बड़ी कृपा होगी जवाब दे दे, कागज पर लिख दे। राजा भी हैरान हुआ, जो बाहर ही पकड़ लाए, ये क्या नास्तिक होगा, ये बेचारा है, इसकी सरल बातें भी अभी इसे पता नहीं कि रोटी क्या है, इसके सवाल कोई मेटाफिजिक्स के, कोई ज्ञान के तो नहीं। पंडितों ने लिखा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि कहीं नहीं पढ़ा था कि रोटी क्या है, पढ़े ही नहीं था, किसी किताब में लिखा ही नहीं था, किसी ब्रह्म सूत्र में, किसी गीता में, किसी कुरान में कहीं नहीं लिखा कि रोटी क्या है, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। फिर एक ने लिखा कि रोटी एक तरह का भोजन है, और क्या करें। दूसरे ने लिखा कि रोटी गेहूं, पानी और आग का जोड़। किसी ने लिखा कि रोटी बड़ी ताकतवर चीज है, किसी ने कहा रोटी भगवान का वरदान है, ऐसा किसी ने लिखा। किसी ने लिखा कि रोटी क्या है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रोटी सब कुछ है, खून भी वही है, हड्डी भी वही है, मांस भी वही है, मज्जा भी वही, सभी वही, रोटी क्या कहना बहुत मुश्किल, रोटी बड़ी मिस्ट्री। एक ने लिखा कि पहले ये पता चल जाए कि पूछने वाले का मतलब क्या है, तभी मैं बता सकता हूँ। सातों कागज लेके राजा के सामने उसने कहा ये कागज देखना है, अभी इन पंडितों को ये भी पता नहीं कि रोटी क्या है, और ये सात इस पे भी राजी नहीं है कि रोटी क्या है, ये इस पे कैसे राजी हो गए कि ईश्वर क्या है और आस्तिकता क्या होना। इन्होंने कैसे तौल लिया वो मुझे पता पता नहीं यहाँ, तो मैं भी उस तराजू पे चल रहा हूँ, अभी मुझे ही पता नहीं है कि मैं कौन नास्तिक हूँ कि आस्तिक हूँ, इनको कैसे पता चल गया। एक तरह की बुद्धिमत्ता उन पंडितों के पास भी थी, किताबों में जो लिखा था वो जानते थे, और यह आदमी बड़ा होशियार है, मैं किताब की बात ही नहीं पूछी। ये आदमी भी एक तरह की बुद्धिमत्ता लिए जो उससे गहरी, यानी इसके पास भी एक विस्तम है। तो हम अक्सर होता है क्या है कठिनाई कि हमें बुद्धिमान आदमी नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो बुद्धिमत्ता है हम उसी को तौलते करते हैं। और हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि जाने अनजाने जो हमसे सहमत हो जाए वो बुद्धिमान मालूम पड़ता है, जो कि ठीक नहीं, जो कि ठीक नहीं। मुश्किल तो यही है कि जो बुद्धिमान है वो सहमत जरा मुश्किल से हो सकेगा, और हमारा मन कहता है कि जो सहमत हो जाए उसको हम बुद्धिमान मान ले, सरल है वो बात, बहुत सरल है, लेकिन जरा कठिन है सहमति। सहमत हो जाए वो बुद्धिमान आदमी, यानी हमारी नजर में उसकी बुद्धिमत्ता हमारी सहमति से हम तौल लेते हैं, और जबकि बुद्धिमान आदमी का सहमत होना जरा मुश्किल,
अपनी नजर है,
अपनी नजर है, अपनी दृष्टि है, अपना सोचना है। और मैं मानता ये हूं कि कोई आदमी किसी से सहमत हो ही क्यों, असल में सहमति की आकांक्षा बहुत गहरे में वायलेंस है। जब मैं ये आकांक्षा करूं कि मुझसे आपको सहमत होना चाहिए, तो मैं किसी न किसी गहरे तल पर आपको मिटाना चाहता हूं और अपने को उसमें बिठाना चाहता हूं, मैं आपको मारना चाहता हूं, आपको डोमिनेट करना चाहता हूं, मारना चाहता हूं। तो हम ये भी ख्याल में रहते हैं जो हमसे सहमत हो जाए वो बुद्धिमान है, और इसलिए ये हो जाता है कि गुरुओं महात्माओं के पास निपट बुद्धू इकट्ठे हो जाते हैं जो उनसे सहमत हो जाते हैं, वो समझते हैं कि बहुत अच्छे लोग इकट्ठे हो गए, और वो जो इकट्ठे हो गए वो वही लोग हैं जो उनसे सहमत हो जाते हैं। वोल्टेयर के खिलाफ कोई एक आदमी था विद्रोह, और उसने वोल्टेयर के खिलाफ बहुत सी बातें कही, और वो एक दिन वोल्टेयर को रास्ते पे मिल गया, तो उसने वोल्टेयर से कहा कि आप तो सोचते हो कि किस आदमी को मरवा डालो, तो वोल्टेयर ने कहा क्या करते हो, घर चलो, आज मैंने डायरी में तुम्हारे संबंध में एक वाक्य लिखा है। वो घर उसे लाया, डायरी में उसने एक वाक्य लिखा है कि जो मुझसे असहमत है वो मेरे विरोध में, उन्हें उस तरह के सोचने का अधिकार और हक है और उस तरह बोलने का, अगर इसकी लड़ाई में मुझे अपनी जान गंवानी पड़े तो मैं जान गंवा दूंगा, लेकिन वे गलत हैं इसे कहने का अधिकार मैं मानता रहूंगा, मैं जान लगा दूंगा उनके इस अधिकार के लिए कि उन्हें ये सोचने का हक है, लेकिन वो गलत है ये कहने का। अगर इतना हमें ख्याल हो कि हम सहमति न खोज रहे हैं तो बहुत बुद्धिमान लोग मिलते हैं, लेकिन सहमति खोजने की वजह से कठिनाई हो जाती है। और फिर ये होता है कि जाने अनजाने किसी न किसी रूप में हम उस आदमी को पसंद करते हैं जो किसी न किसी भांति हमारे जैसा है, जिससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और दुख की बात यही है कि जो हमारे जैसा है वो हमें कोई रस नहीं दे सकता, रस हमें वही दे सकता है जो हमसे थोड़ा दिल है और थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट उतने रखते हैं,
और फिर भी जो अपने जैसे है वही पसंद आता
जाता है। हाँ, वो गलती है हमारी, और इसलिए हम भूल में पड़ते थोड़े दिन में पछताने लगते हैं। हम हमेशा ये कर लेते हैं कि जो हमारे जैसा उसको चुन लेते हैं, पहले मौके पर वही अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारी दर्पण जैसे हमें दिखाई पड़ जाते हैं, फिर चार दिन बाद मुश्किल शुरू हो जाती है क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल हमारे जैसा है, बोरिंग तो लाने वाला है। और हाँ, ये पश्चिम में जो सारे के सारे प्रेम विवाह की असफलता है उसकी बुनियाद में कारण ये, हर व्यक्ति उसको प्रेम कर लेता पहले मौके पर जो उसे अपने जैसा लगता है, लेकिन जब साथ रहता है तो अपने जैसा आदमी सुखद नहीं मालूम पड़ता, भिन्न चाहिए, भेद चाहिए, उसकी अपनी रुचि, अपना व्यक्तित्व चाहिए, और वो बिल्कुल मेरे जैसा है तो वो काफी छाया मालूम होने लगता है।
वो व्यर्थ हो जाता है, छाया काफी मालूम होने लगता है, वो व्यर्थ हो जाता है, उसमें कोई रस नहीं रह जाता। और एक बात है कि उसे हमें जीतने की आगे कोई जरूरत नहीं रह जाती, वो जीत ही लिया गया है, बात खत्म हो गई, तो वो अक्सर हो जाता है। और इसलिए अपने से विरोधी को प्रेम करने की क्षमता जब तक न बढ़े तब तक न तो हम कीमती मित्र बना सकते हैं, न कीमती पत्नी खोज सकते, न कीमती पति खोज सकते, न कीमती साथी खोज सकते, हम खोज ही नहीं सकते अपने से विरोधी को जब तक हम प्रेम करने की क्षमता न विकसित करते। तो इसलिए पता नहीं चलता कि कितनी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता तो बहुत है, बहुत है। कई बार ऐसी जगह होती है जहां हम कभी नहीं सोचते। एक ये जिसको अभी तक का कोई 150-200 वर्षों में कॉलेज के प्रोफेसर थे, ये बुद्धिमान समझे जाते रहे, लेकिन दुनिया में जितने आविष्कार किए हैं वो उन लोगों ने किए जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था। यानी प्रोफेसर के नाम तो आविष्कार ना के बराबर है, भूल चूक है,
वो लीग के फकीरों पे रह
जाते। हाँ, वो बुद्धिमान होने का जो, और ऐसी जगह से ऐसे अनजान कोने से कोई आदमी कुछ खोज लेता है जिसका हम कभी ख्याल ही नहीं करते, ये भी बुद्धिमान हो, कोई ख्याल ही नहीं उठ सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि रॉ इंटेलिजेंस जो है वो दिखाई नहीं पड़ती, कच्ची, यूनिवर्सिटी से नहीं गुजरी, पक नहीं गई, कच्ची, दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन कच्ची बुद्धिमत्ता में विकास की ज्यादा संभावनाएं होती हैं और बहुत उपाय मार्ग होते हैं, और पकी हुई बुद्धिमत्ता पके हुए घड़े की तरह हो जाती है जिसको अब नहीं ढाला जा सकता, कच्चा घड़ा है वो अभी बहुत तरह से शक्ल ले सकता है। तो रॉ इंटेलिजेंस तो बहुत है दुनिया में, और भी बड़े मजे की स्थितियां हैं कि ये जो जिसको हम बुद्धिमान समझदार कहते हैं, जिस प्रक्रिया से हम इसे गुजारते हैं, जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से, वो सब बुद्धिमत्ता छीन लेती है। हेनरी थारो था तो वो विश्वविद्यालय से पढ़ते लौटा, वो अपने गांव का पहला ग्रेजुएट था, तो गांव के लोगों ने स्वागत किया और उस गांव के बूढ़े आदमी ने स्वागत में कहा हेनरी थारो के कि हमारे गांव का पहला स्नातक है, इसलिए मैं इसको आदर देने नहीं आया हूं, मैं तो आदर देने इसलिए आया हूं कि ये लड़का विश्वविद्यालय से अपने को बचा के वापस लौट आया। कहा कि विश्वविद्यालय से अपने को बचा के वापस लौट आया, बिल्कुल अभी भी ताजा है, बासा नहीं पड़ गया, इसको मार नहीं पाए इसके प्रोफेसर गुरु इकट्ठे होकर, इसकी जान नहीं ले पाए, ये अब भी सोचता है और अब भी फ्रेश पॉइंट्स पर, ताजे दृष्टिकोण पर खड़ा हो जाता है, और अभी भी इस तरह भाव नहीं इसमें पैदा हो गया कि मैं जान लिया हूं, अभी भी इसमें ह्यूमिलिटी है कि खोजता हूं, कुछ पता नहीं वो इसमें है, तो मैं इसलिए इसका स्वागत करने आया। और ये सच बात है कि ये बहुत रेयर घटना है, हमारी जो 25 साल की तालीम की व्यवस्था है वो बुद्धिमत्ता को मारने की है, संभावना भी हो तो उसको छांट डालने की है, क्योंकि बुद्धिमत्ता बहुत गहरे में विद्रोह है, और न समाज विद्रोह चाहता है, न बाप विद्रोह चाहते, न माँ, न गुरु, न नेता, कोई विद्रोह नहीं चाहता, और जिस आदमी में थोड़ी भी बुद्धि है वो विद्रोही हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि 25 जगह कहेगी कि ये गलत है,
क्यों है,
हाँ हाँ पूछे क्यों है, हजार सवाल उठाएगा और सब जवाब जो पुराने पके पके हैं उन सबको गड़बड़ कर देगा, सबको हिला देगा, डुला देगा और चीजों को अराजक कर देगा। तो इसलिए बुद्धि का डर रहा है दुनिया में हमेशा, इसलिए बुद्धिमान आदमी पैदा न हो पाए, इसकी हमारी सारी चेष्टाएं हैं, सारी चेष्टाएं। बाप भी बेटे से कहता है कि जो जो आज्ञाकारी है वो अच्छा रहा, लेकिन जिसमें थोड़ी बुद्धि है वो एकदम आज्ञाकारी नहीं भी हो सकता, आज्ञा मान सकता है, आज्ञा तोड़ भी सकता है, वो दोनों संभावनाएं सदा मौजूद रहेंगी, वो कभी ना भी कह सकता है, हां भी कह सकता है, लेकिन हां ऐसी नहीं होगी कि जिसका भीतर का ना बिल्कुल मार डाला गया है। मगर बाप को ये पसंद नहीं पड़ेगा लड़का जो ना भी कहेगा, बाप के अहंकार के विरोध में ये बात कोई लड़का और ना कहे, स्कूल का शिक्षक भी नहीं चाहता कि कोई ना कहे, देश का नेता भी नहीं चाहता कि कोई ना कहे, सब चाहते हैं आज्ञा आज्ञा, चुपचाप मानो और चलो, तो बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाएगी, जंग खा जाएगी। बहुत गहरे में समझा जाए तो बुद्धि आती है निगेटिव से, सदा ही उसमें जो निखार आता है वो इंकार से आता है। जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति बनाता हो तो छेनी से तोड़ डालता है जगह जगह से, वो मूर्ति पत्थर से नहीं बनती, वो मूर्ति छेनी से और तोड़े गए टुकड़ों से निर्मित होती है अंततः, जो छान के काट डाला गया उससे निर्मित होती है। नहीं तो पत्थर ही है, उसमें अगर तोड़ नहीं होती तो बना रह जाता है। तो प्रतिभा भी निषेध से, निगेटिव से, काटने से, तोड़ने से, इंकार से बनती, और कोई पसंद नहीं करता इसको तो हम सब मार डालते हैं मिलकर। मैं भी उस आदमी को पसंद करूंगा कि जो मैं कहूंगी ये दशक है, हाँ ऐसा ही, ये मेरे अहंकार को बड़ा गहरा तृप्ति होती है इस बात, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, और अकेला मैं नहीं मानता और लोग भी मानते। इसलिए लोग अनुयायियों को खोजने निकल जाते हैं। जितने लोग अनुयायियों को खोजते हैं ये बहुत गहरे में, इन्हें भरोसा नहीं कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। जब बहुत लोग भी इसको ठीक कहते हैं तब इनको भी भरोसा आता है। ठीक होगा, ये जब इतने लोग मानते हैं तो गलत हो गया। जो आदमी जितना भीतर भरोसे से कम है, भरोसा कम है जिसमें अपनी बात का, वो उतने अनुयायी खोजेगा। अनुयायी जो है वो सब्सिट्यूट है कॉन्फिडेंस लाने वाले, तो सबको राजी करना चाहेगा, सहमत करना चाहेगा, और वो तोड़ेगा लोगों की प्रतिभा नष्ट करेगा। तो अब तक आदमी ने प्रतिभा को जगने नहीं दिया, बुद्धिमत्ता को पैदा नहीं होने दिया, इसलिए वो कम है। वैसे वो बहुत है, और अगर उसे फूटने का मौका मिले तो दुनिया अनूठी हो जाए, लेकिन तब उस दुनिया में नियम थोड़े कम हो जाए, उस दुनिया में ढांचे टूट जाए, उस दुनिया में व्यक्ति हो समाज कम होगा। जितनी बुद्धिमत्ता होगी उस दुनिया में इंडिविजुअल्स होंगे, सोसाइटी मिट जाएगी,
और इंडिविजुअल डिसिप्लिन होगी।
हाँ, इंडिविजुअल डिसिप्लिन होगी,
सामूहिक
डिसिप्लिन नहीं रह जाएगी, इनर डिसिप्लिन होगी जो उसके भीतर से आती है।
और
तो उस खतरे से बचने के लिए बुद्धिमान को हम पैदा नहीं होने देते, इसलिए सुकरात को जहर पिला देते हैं, जीसस को छुरी पे लटकाते हैं। हमने बुद्धिमान आदमी के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं किया कभी, तो वो पैदा कैसे हो? खूब उसका होना बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि हम सब मिलकर उसको मार डालते हैं, इसलिए नहीं दिखता विजय जी। वैसे तो बुद्धिमानी बहुत है, हर आदमी में है, ऐसे तो जन्म से उसको मिलती ही है। अगर वो खुद ही उसको खोता चला जाए तो बात अलग है, सौदा कर लेता है, वो कन्वीनियंस खरीद लेता है, इंटेलिजेंस खो देता है, सौदा है, सुविधा इसी में कि ज्यादा बुद्धिमानी न विकसित की जाए, सुविधा है बहुत
इसमें।
बिल्कुल यही है, हालत ही है, बात ही है, सब जगह इंटेलिजेंस को नुकसान पहुंचा है, सब जगह इंटेलिजेंस को नुकसान
पहुंचा
है। इंडिविजुअल क्रिएटिव फैकल्टीज नहीं, उनको नहीं, उनको खत्म ही करती है, इसलिए नहीं मिलता। नहीं तो ऐसे तरह के आदमी, और अगर हम बहुत सहानुभूति से खोजने जाए तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के पास परीक्षक की तरह जाते हैं तब उस व्यक्ति के सब द्वार दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो एकदम क्लोज हो जाता है, और डर जाता है और डिफेंसिव हो जाता है। और जब कोई आदमी डिफेंसिव हो गया तो फिर हमें उसके असली का पता नहीं चलता भी तक क्या है। उसके पास अत्यंत सहानुभूति से, सिंपैथी से जाने की जरूरत है, बड़े प्रेम से, परीक्षक की तरह नहीं। तो शायद एक साधारण से आदमी में भी इतनी बुद्धिमत्ता के फूल खिलने लगते हैं, लेकिन कभी किसी ने उसको सहानुभूति से नहीं देखा तो वो डर गया, सब फूल उसने भीतर छिपा लिए, वो डरा हुआ खड़ा है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये आदमी, हर आदमी डिफेंस की हालत में हमने डाल दिया, ऐसी बेहूदी सोसाइटी हमने बनाई दुनिया में अभी तक कि हर आदमी रक्षा की हालत में पड़ा हुआ है, डिफेंसिव हो गया है, और जब भी कोई डिफेंसिव हो जाए तब वो कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि खुलने में डर है, वो हमेशा सिकुड़ा रहता, बंद रहता। और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जिन्हें आप प्रेम करने लगते हैं, प्रेम के बाद आप पाते हैं उनमें बुद्धिमत्ता है, वो प्रेम उनकी बुद्धिमत्ता को एकदम निकालने का, खुलने का मार्ग बन जाता है, और दूसरा उनमें बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं पाता। जिस मित्र को आप प्रेम कर, हाँ हाँ,
वाले को बेवकूफ
बेवकूफ कहेगा, उसको दिखता है उसमें कुछ भी तो नहीं है। और सच बात यह है कि न केवल बुद्धिमत्ता बल्कि जीवन की सारी चीजें सहानुभूति की हवा में खिलती हैं। सच बात तो ये है कि कोई आदमी इतना सुंदर नहीं होता जितना उसको कोई प्रेम करने वाला मिल जाता तब वो हो जाता है एकदम से। इतना होते नहीं, वो कभी कोई आदमी सुंदर, वो क्योंकि वो हमेशा डिफेंसिव है, वो सबसे बड़ा रहता है। लेकिन जब कोई उसके पास बहुत प्रेम से आता है तो उसको सब पकड़ने के जाता है। अब वो डर नहीं है इससे कोई, वो पूरा खुल जाता है। लोग कहते हैं कि सौंदर्य को हम प्रेम करते हैं, ये आधा हिस्सा है। प्रेम करके हम सौंदर्य निर्मित करते हैं, ये ज्यादा गहरा और ज्यादा मूल्यवान हिस्सा है। हम सौंदर्य क्रिएट निर्मित करते हैं,
क्रिएट करते
हैं, और उसी तरह इंटेलिजेंस भी पैदा होती है, उसी तरह सामर्थ्य भी पैदा होता है, कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। लेकिन कोई किसी को प्रेम ही नहीं करता। हम सब प्रेम चाहते हैं, इसलिए किसी की इंटेलिजेंस हम नहीं खोल पाते और न किसी का सौंदर्य हम प्रकट कर पाते। हम प्रेम चाहते हैं और वो देने से खुलेगा। और मजा ये है कि अगर हम दें तो प्रेम लौटता है और मांगे तो रुक जाता है, वो मांगने से कभी आती नहीं। दुनिया में मांगने से सिर्फ कूड़ा करकट मिल सकता है, मूल्यवान कुछ भी नहीं मिलता मांगने से। मूल्यवान तो किसी गहरे रिस्पांस से आता है, और रिस्पांस तो तब होता है जब मैं दूं। तो इसलिए बहुत प्रेम की कमी होने की वजह से दुनिया में बहुत कम लोग बुद्धिमान दिखाई पड़ते हैं। वो प्रेम की कमी है, कोई किसी को प्रेम ही नहीं कर रहा। मैं एक अमरीकी फिल्म अभिनेत्री थी ग्रेटा गार्गो, उसका कहीं कोई जीवन पड़ता था। वो यूरोप के किसी छोटे से कोने के गांव में 20 वर्ष 18 वर्ष तक की हो गई, तब तक एक नाईबाड़े में लोगों की दाढ़ी पे साबुन लगाने का काम करती थी। दो पैसा मिल जाता है दाढ़ी पे साबुन लगाने का। दाढ़ी तो नाई काटता है, साबुन लगाने का काम कोई लड़की करती थी। एक अमरीकी डायरेक्टर घूमने आया था और उस नाईबाड़े में दाढ़ी बनवाने गया था। वो लड़की तो वर्षों से साबुन लगा रही थी, लेकिन साबुन लगाने वाली लड़कियों को देखता कौन? वो उस डायरेक्टर की दाढ़ी पर साबुन लगा रही थी, उसने आईने में उस लड़की को देखा, हाउ ब्यूटीफुल। और ग्रेटा गार्गो ने लिखा है कि मैं पहली दफे सुंदर हुई। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। एक आदमी ने कहा कि कितनी सुंदर है, और बस सब बदल गया। वो आओ इधर
आओ,
सुंदर हुई और एकदम सब बदल गया। वो 18 साल कहां खो गए मुझे पता नहीं। मैं दूसरी ही व्यक्ति होगी तत्क्षण। मैं साबुन लगाने वाली लड़की नहीं थी, फिर हाथ मेरा रुक गया, बात ही बदल गई थी, सब कुछ बदल गया था, जैसे एक नींद टूट गई थी। सौंदर्य का बोध उसे फिर अभिनय की खोज में ले गया। उसने लिखा है कहीं कि एक आदमी ने चलते हुए इतना सा कह दिया कि कितना सुंदर है। इसकी मैं प्रतीक्षा करी थी, मेरा सौंदर्य इसकी प्रतीक्षा करता था कभी, मगर मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कभी। ऐसे ही बुद्धिमत्ता भी प्रतीक्षा करती, लेकिन कोई कभी कहे और किसी के प्रेम में वो खिल जाए, कोई चौंका दे उसे। लेकिन हालतें उल्टी हैं कि हर आदमी दूसरे आदमी को बुद्धिमान तो मानने को राजी ही नहीं, क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगती है इस बात। इसलिए हर आदमी हर दूसरे आदमी को बुद्धिहीन सिद्ध करने की सब तरह की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से ये कोशिश चल रही है। बाप भी ये नहीं चाहता कि बेटा उससे ज्यादा बुद्धिमान हो जाए, इतना बाप भी नहीं चाहता। माँ भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी उससे ज्यादा सुंदर हो जाए, माँ भी नहीं चाहती। और अगर माँ के सामने भी उसकी बेटी को कोई कह देता है कि बहुत सुंदर, तो माँ पे जो गुजरती है उसका ख्याल करना मुश्किल है। तो वो जो 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 हवा चाहिए चारों तरफ, वो इस साइकिक एटमॉस्फेयर चाहिए जहां चीजें पैदा हों, वो हमने पिछले 5000 साल में पैदा नहीं कर पाए। और इसलिए अधिकतम लोग जो बहुत सुंदर हो सकते थे साधारण मर जाते, बहुत से लोग जो बुद्धिमान हो सकते थे साधारण मर जाते, बहुत से लोग जो बिल्कुल असाधारण हो सकते थे कि जिनका होना खूबी होती जमीन पर, वो बिल्कुल ही एक कोने में ऐसे मर जाते हैं कि थे या नहीं कभी पता नहीं चलता। इसको ही मैं कहता हूं कि बहुत से लोग बिना आत्मा को पाए मर जाते हैं। मैं जब आत्मा की बात करता हूं तो मुझे ये सारा ख्याल होता है कि बहुत से लोग आत्मा पाए बिना मर जाते, उनको पता ही नहीं चलता कि वो थे भी।
का मतलब ये हुआ कि पाना दूसरे पे ही निर्भर है, अपने आप पे भी तो होना चाहिए।
नहीं अपने
ही नहीं कहते हाँ,
ये ठीक बात
है। दूसरे की अप्रिसिएशन के बगैर भी जान सकता था
ये ठीक बात है, ये अपने पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन 99% दूसरे पर निर्भर होता है, क्योंकि जो होना चाहिए वो है नहीं। होना तो यही चाहिए कि प्रत्येक पर निर्भर हो, लेकिन 99% ये दूसरे पर निर्भर होता है, 1% ही स्वयं पर निर्भर होता है, और वो जो 1% है वो भी आपको लगता ही है कि स्वयं पर निर्भर है, वो भी बहुत गहरे अर्थों में दूसरों पर निर्भर होता है। जैसे दोनों संभावनाएं हैं कि एक आदमी को आप कहेंगे बहुत बुद्धिमान है, उसकी हवा उसके आसपास के सारे लोग उसके बुद्धिमान कहते हो मानते हो तो उसकी बुद्धिमत्ता पैदा हो जाए, और ये भी संभव है लेकिन ये बहुत मुश्किल से संभव है कि सारे लोग उसको बुद्धिहीन कहते हो तो वो डिफेंस में बुद्धिमान होने की चेष्टा में लग जाए और सिद्ध करके बता दे कि बुद्धिमान है, लेकिन ये भी दूसरे पे ही निर्भर होना है, इसमें फर्क नहीं पड़ा दोनों में, लेकिन ये संभावना बहुत कम है, ये संभावना बहुत कम है, 100 में 1 है, और इसीलिए हमने जो समाज बनाया है उसमें कभी कभी जिसको हम बुद्धिमान प्रतिभाशाली कहें वो हो पाता है, वो जो लड़के विरोध में खड़ा हो जाता है, सामान्यता ये नहीं होगा। ये ऐसा ही है मामला जैसे कि इस कमरे में हम प्लेग के कीटाणु फैला रहे हैं, 50 मित्र बैठे हैं और 40 मित्र बीमार पड़ जाए और बाकी 10 कहें ये तो अपने पर निर्भर है, प्लेग के कीटाणुओं से क्या होता है। देखो हम भी तो यही प्लेग के कीटाणुओं में हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़े, तो ये सवाल प्लेग के कीटाणुओं का नहीं, लेकिन बात ऐसी नहीं, वो जो 40 लोग बीमार पड़ गए हैं अगर प्लेग के कीटाणु ना होते तो वो बीमार ना पड़ते, और ये जो 10 बीमार नहीं पड़ पा रहे हैं ये भी उतने स्वस्थ नहीं हो सकते हैं जितने कि प्लेग के कीटाणु न होते तो होते, उतने स्वस्थ ये भी नहीं हो सकते, भला बीमार न पड़ गए हों भला मर न गए हों लेकिन फिर भी उतने स्वस्थ नहीं हो सकते जितने कि ये भी हुए होते। यानी मेरा कहना यह है कि समाज ने अब तक व्यक्ति को विकसित होने में सहायता नहीं दी है, तब कहीं 10-5 लोग 1,00,000-2,00,000 करोड़ में विकसित हो जाते हैं। अगर समाज ने मौका दिया होता, जिसको मैं अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं, ऐसा अवसर दिया होता तो लाखों लोग विकसित होते, और ये जो 10 लोग हैं ना ये और 1,000 गुना ज्यादा विकसित होते, क्योंकि ये तो इतने विरोध में इतने विकसित हो पाए, तो इनको तो कहना ही क्या था, हम खाद ना डालें और 10 पौधे लगा दें तो हो सकता है एक आध पौधे में फूल आ जाए, एक गरीब सा फूल, और बाकी 9 पौधे बिना फूल के रह जाए, तो हम कहें तो अपने भीतर की बात है, इसमें आ गया 9 में नहीं आया, लेकिन खाद डालने पर 9 में भी आता और इसमें जो फूल आता उसका तो हिसाब लगाना मुश्किल, वो कैसा होता है, ऐसा दुबला या कुंडला हुआ फूल ना होता, जिंदा फूल बड़ा फूल होता, उसकी शान अलग होती। तो मेरा कहना यह है कि ये बात तो सच है कि भीतर हमारे संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं के लिए अवसर बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है, और संभावनाओं के लिए लड़ना चाहिए, अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अवसर भी निर्मित हो इसकी धारणा विकसित करनी चाहिए, लड़ना ही पड़ेगा एक आदमी को। लेकिन ये भी आप ठीक कहते हैं, असल में प्रतिभा सदा ही भविष्य की होती है, प्रतिभा सदा ही भविष्य की होती है, और जिसे हम आज समझ पाते हैं कि प्रतिभा है उसे हम इसलिए समझ पाते हैं वो प्रतिभा नहीं है और अतीत की प्रतिभाओं की कुछ नकल है तो हम समझ पाते हैं, क्योंकि अभी सच में जो आज प्रतिभाशाली पैदा होगा व्यक्ति, न तो उसकी प्रतिभा को जांचने के आज मापदंड होते हैं, न आंख होती, न लोग होते, न हवा होती, 100-200 वर्ष लग जाएंगे, प्रतिभाशाली आदमी के ऊपर दोहरी कठिनाइयां, वो अपनी प्रतिभा से सृजन भी करे और अपनी प्रतिभा को पहचानने के योग्य हवा और मापदंड भी खड़ा करे, वो मरते भी नहीं हो पाता, और अक्सर ऐसा होता है कि 200-400 वर्ष बीत के ख्याल में आ पाता है वो आदमी। ये भी ठीक कहते हैं आप, जो बहुत चरम प्रतिभा की बात है वो तो सदा ही भविष्य की है और उसे स्वीकृति आज तक तो नहीं मिली, लेकिन मेरा मानना है कि समाज ऐसा होना चाहिए कि चाहे हम प्रतिभा को आज बिल्कुल माप न पा रहे हों, जांच भी न पा रहे हों, अनबूझ हो, न पहचान में पकड़ में आती हो, तो भी समाज ऐसा चाहिए कि भविष्य की संभावनाओं को भी आदर देता हो। अब तक हम सिर्फ अतीत की उपलब्धियों को आदर देते हैं, भविष्य की संभावनाओं को नहीं। अतीत की उपलब्धियों को आदर देते हैं और अतीत की उपलब्धियों को आदर ना दे तो भी चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। यानी सवाल ये है कि आज अगर बुद्ध की प्रतिभा पहचान ली जाए और हम आदर भी दें तो फर्क क्या पड़ता है, बात खत्म हो गई है। लेकिन भविष्य की संभावनाओं को पहचानना बहुत जरूरी, क्योंकि वो होने वाला है और अगर हम उसे पहचानते तो उसके होने में साथी और सहयोगी बन जाएंगे। वास्तविकता को देख लेना तो बहुत ही सरल है, एक बगीचे में फूल खिले इनको कोई भी देख लेता है, लेकिन एक बीच की संभावनाओं को पहचानना पारखी की बात है। समाज ऐसा भी होना चाहिए कि वो भविष्य की संभावनाओं को भी अंगीकार करता हो और भूल चूक के लिए राजी होता हो, क्योंकि जब भी नए रास्तों पर कोई चलता है तो गिरता भी है, भूल चूक भी करता है, भटकता भी है। यानी मेरा कहना यह कि भटकने को एक बार की ही बुरा नहीं मान लेना चाहिए अगर हमें संभावनाओं को आदर देना हो तो, और जितने मापदंड हमारे पास हैं उनको अंतिम नहीं मान लेना चाहिए अगर हमें संभावनाओं को आदर देना हो तो, और हमें सदा इस बात का बोध होना चाहिए कि जो जाना गया जो पाया गया वो बहुत थोड़ा है उसके सामने जो जाना जाएगा और जो पाया जाएगा। इसका बोध अगर समाज को हो तो ये कठिनाई नहीं होगी भविष्य की प्रतिभा को भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो भी सोचा जा सकता है वो किसी न किसी रूप से हो सकता है, वो सोचा जा सकता है ना, तो वो हो भी सकता है। ये दूसरी बात है कि कितना फासला लगे, कितनी कठिनाई हो, कितनी मुश्किल हो, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बहुत शीघ्रता से हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया में जो कुंठा है वो है ही इसलिए कि अधिकतम लोगों को स्वयं होने का मौका नहीं मिल पाता है, और कोई कारण नहीं। एंग्विश जो है आज की पीढ़ी का, सारे युग का, सारे जगत का, वो जो परेशानी है, बेचैनी है, वो बेचैनी अब भौतिक नहीं है, गरीब मुल्कों को छोड़ दें, वहां की बेचैनी और है, वो बेचैनी अब एकदम भौतिक नहीं है, अब वो बेचैनी बहुत गहरे अर्थों में आत्मिक हो गई है। आत्मिक इस अर्थों में कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को खोज लेने के लिए आतुर हो गया है। ये आतुरता इतनी तीव्र है कि अगर उसे मौका नहीं मिलता है तो दुखी होगा, पछताएगा, आत्मघात करेगा, शराब पिएगा, मरेगा, चुरा मारेगा, कुछ करेगा जहां से वो टूटेगा। क्योंकि ये बड़ी महत्व का मामला है कि जो व्यक्ति कुछ सृजन कर सकता है, अगर सृजन न कर पाए तो उसकी सारी शक्ति विध्वंस बनने ही वाली है, क्योंकि शक्ति के दो ही उपाय हैं, या तो वो सृजनात्मक हो जाए या विध्वंस बन जाए, और जब भी सृजन की शक्ति ठहर जाती है तो विध्वंस बन जाती है। इसलिए मीडिया कर आदमी कभी विध्वंसक नहीं होता, जिसके पास कोई प्रतिभा जैसी चीज नहीं है बहुत, वो कभी विध्वंसक नहीं होता, क्योंकि विध्वंस के लिए सृजनात्मक शक्ति चाहिए, और जब वो फ्रस्ट्रेट होती है, रुकती है, दबाव पड़ता है, टूट पड़ती, तो फिर वो फोड़ने लगती है, मिटाने लगती है, जो बना सकती थी वो मिटाने लगती है। एक ऐसी जो स्थिति बन गई है, उस स्थिति को देख के ऐसा लगता है कि हम उस दबाव के करीब पहुंच रहे हैं जहां कठिनाई व्यक्ति की नहीं रह गई है, जहां की सामूहिक रूप से व्यक्ति कठिनाई में पड़ गए, व्यक्ति ही कठिनाई में पड़ गया है जहां, तो इस बात की संभावना है कि इस दबाव में, इस चुनौती में, इस मरण के किनारे खड़े होने में, हो सकता है कि हम सारे ढांचे को तोड़ सके जो कल ने बनाया था और नया ढांचा दे सके। इसमें कोई बहुत असंभव अब नहीं मालूम होता, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि लोग थक जाते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम से और वैल्यूज रेवोल्यूशन के बाद सेट हो जाती हैं,
बिल्कुल
साल के बाद फिर आदमी उनसे जाता है, फिर सामूहिकता में जाता है,
बिल्कुल थक जाते हैं,
हाँ हाँ पाके भी
बिल्कुल, ही
200 साल के बाद आदमी ये महसूस करेगी फिर सामूहिक हो जाए
नहीं, ये दूसरी बात है, कभी भी नहीं था, क्योंकि पुराना एस्टेब्लिशमेंट सुव्यवस्थित था, बहुत डरा हुआ नहीं था, शांति से सोया हुआ था, तैयार था, कोई बात नहीं थी। ये जो क्रांतिकारी इतनी मुश्किल से सत्ता में पहुंचता है और ताकत इसके हाथ में आती इतनी मुश्किल से कि छीने जाने के प्रति इतना सजग और डर जाता है कि सब तरह के रास्ते तोड़ देता है कि कहीं से कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो क्रांतिकारी तो हमेशा सत्ता में आने पर क्रांति विरोधी सिद्ध होता है, और इसलिए मेरा मानना है कि ठीक ठीक क्रांतिकारी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट जाने को राजी नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट में जाने को राजी नहीं होगा। और ये भी मेरा मानना है कि क्रांति कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक तिथि में घटती और फिर खत्म हो जाती। क्रांति एक सतत प्रक्रिया, कांस्टेंट कंटिन्यूटी है। ऐसा नहीं मानता 1917 में फलानी तारीख को क्रांति हो गई रूस में, और फलानी तारीख को चीन में, और फलानी तारीख को हिंदुस्तान में। दो तरह के समाज है, और अभी तक का जो समाज है वो असल में स्थिति स्थापक है, एस्टेब्लिशमेंट वाला ही है, जो क्रांति नहीं चाहता। लेकिन जब इतनी मुश्किल हो जाती है उस व्यवस्था में, तो उसी व्यवस्था के भीतर से क्रांति दबाव से निकल आती, फिर नई व्यवस्था निर्मित हो जाती। अब तक कोई क्रांतिकारी समाज निर्मित नहीं हुआ। क्रांतिकारी समाज का मतलब यह है कि जिसमें क्रांति की कभी जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि क्रांति रोज चलती ही रहेगी। यानी हम किसी भी दिन किसी चीज को एस्टेब्लिश नहीं मान लेंगे, और रोज मौके रहेंगे प्रयोग के, रोज हम बदलते रहेंगे, और जो हमने कल बनाया था उसे जिन्होंने बनाया है वो मिटाने की हिम्मत भी रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, अब तक तो यही होता रहा और आगे भी यही हो सकता है, लेकिन वो बेमानी है। अब यानी इतना 5000 साल का अनुभव ये कहता है क्रांतियां सब असफल हुई, कोई क्रांति सफल नहीं हुई, क्योंकि लगा कि सफल होती है, सफल होते से लगा कि सब गड़बड़ हो गया, वो तो क्रांति खुद ही वही हो गई जो उसका दुश्मन था। तो अब तो हमें क्रांति की प्रक्रिया पर फिक्र करनी चाहिए, क्रांति करने की नहीं, एक क्रांति की सतत गति हो, हम क्रांतिकारी चित्त पैदा करें, ऐसा चित्त जो कहीं एस्टेब्लिश्ड फॉर्म लेता ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं लेता। और अगर ऐसी समाज की स्थिति मनस्थिति को हम ढाल सकें जो रोज बदलती चली जाए नदी की धारा की तरह, ऐसा नहीं है कि नदी की धारा कल बही थी तो अब बहने का काम न रहा, उसे नदी रहना है तो आज भी बहना है, और नदी रहना तो कल भी बहना है, नदी रहना तो बहते ही रहना है, और नहीं तो तालाब हो जाएगी, सब नदियां तालाब हो जाती हैं, बहने से बचेंगे तालाब हो जाते हैं। अब तक की सब क्रांतियां तालाब बन गई, क्योंकि हम क्रांति को एक घटना समझे, हमने समझा कि ऐसी क्रांति कोई चीज है कि एक दफा कर लो फिर निपट गए। क्रांति ऐसी कोई चीज नहीं है, वो तो ऐसी चीज है कि उसे करते ही रहो, यानी वो जीवन का ढंग ही बन जाए। क्रांति कोई घटना ना हो, जीने का ढंग ही हो, हम जिए ही ऐसे कि वो क्रांति बन जाए, जीने का व्यवस्था ही क्रांति की हो, तब एक वक्त तब उगने का सवाल नहीं उठता, तब उगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम कहीं स्वीकार करके रुकते नहीं। दूसरी जो बात कहते हैं वो भिन्न है, दूसरी जो बात आप कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने को पाले तो उससे उग जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी अपने को पा ही नहीं पाता, वो इतना अनंत विस्तार है व्यक्ति का अपने को पाना है, कि ऐसी घड़ी कभी नहीं आती जब कोई कह दे कि मैंने अपने को पा लिया, और ऐसी घड़ी अगर आती तो वो आदमी उग जाएगा, फिर नहीं, फिर उगना पक्का है उसका, क्योंकि जो चीज पा ली गई उससे हम उग ही जाते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में व्यक्ति के भीतर जो संभावना इतनी अनंत है कि हम थक के कहने लगते हैं कि हमने पा लिया, असल में हम कभी अपने को नहीं पा पाते। यानी कोई चित्रकार ये नहीं कह सकता कि उसने वो चित्र बना लिया, बात खत्म हो गई है, अब ऐसा कह ही नहीं सकता। रविन्द्रनाथ की जिंदगी में तो बहुत कल्याण, बड़ी बढ़िया घटना लिखी, मर रहे हैं जिस दिन, बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, फिर आंख खुल जाती है तो बात करने लगते हैं, गीत लिखाने लगते हैं। जिस दिन मरे हैं उस दिन 4-6 दफे बेहोशी के बाद होश आया है तो फिर अब उठ नहीं सकते हैं तो बोल के गीत लिखाने लगते हैं, मुंह लड़खड़ा रहा है तो भी। तो किसी ने कहा कि आप छोड़िए फिक्र, आपने बहुत गीत लिखा लिए, 6000 आपके गीत संगीत में बंध गए हैं, ऐसा अब तक दुनिया में कभी नहीं हुआ, शैली के भी 2000 हैं गीत जो संगीत में बंध जाए, महाकवि है तो आप तो महाकवि से भी महाकवि, अब आप चिंता मत करिए, अब आप शांत रहिए। तो उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे कि क्या इस कवि ने अपने को पा लिया, यानी मरने से पहले मर गया था ना, मुझे मरने दो और मुझे लिखाने दो। यानी ये कवि होना एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि बस हो गया पूरा कि 6000 लिख लेता है कंटिन्यूस, मरने की आखिरी घड़ी तक वो लिखा रहे, और आखिरी घड़ी में जो उन्होंने कुछ वचन लिखा है उसमें एक वचन बहुत अद्भुत होकर लिखवाया उन्होंने कि लोग कहते हैं कि मैं महागायक हूं, लेकिन हे परमात्मा उनकी बात मत सुन लेना क्योंकि वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अभी मैं तो साज बिठा पाया था, अभी गाया कहां था, अभी तान तमूरा सब ठोक पीट के तैयार कर लिया था, अब गाने को था और तेरा बुलावा आ गया। जिस आदमी को ठीक से पकड़ आ गई है व्यक्तित्व को गहरे अनंत में ले जाने की, वो किसी दिन ऐसा नहीं पाएगा, उसको 1000 जन्म दो तुम, 1000 जन्मों के बाद भी वो कहेगा अभी हुआ क्या, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी हम चले हैं, अभी पहुंच कहां गए। जिंदगी में पहुंचना नहीं है, चलना है, सिर्फ मृत्यु में पहुंचना है। इसलिए जिनको पहुंचने का ख्याल पैदा हो जाता है वो मर जाते हैं उसी वक्त, उसी वक्त मर गए, फिर वो जीते नहीं, फिर उब जाएंगे, फिर उबना निश्चित। यानी जीवन से हम कभी नहीं उबते, हम असल में मरने से उबते और हम खुद अपने हाथ से मर जाते हैं, क्योंकि मरना कन्वीनियंट पाते, मरना बड़ा सरल है। एक आदमी ने 10 किताबें लिख ली, 10 गीत गा लिए, बात खत्म हो गई, निश्चिंत हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, लोगों ने आदर दिया, बात समाप्त हो गई, अब वो बैठ गया है, पहुंच गया, मंजिल पाली उसने, अब वो मरा, अब वो मर ही गया। यानी ये मुझे ऐसे लगता है जैसे आदमी साइकिल चला रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पैडल कोई वक्त रोक ले, हो गए कि बस ठीक है अब चलना हो चुका, अब चल रहा है, पैडल रोक ले और साइकिल चल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। वो साइकिल चल रही है पूरे वक्त क्योंकि पैडल चल रहा है, जिस दिन पैडल रुका साइकिल रुकी। यानी साइकिल का चलना पैडल के चलने से कुछ अलग चीज नहीं है, तो जो जिंदगी की गति है वो हमारी आत्म खोज से कोई भिन्न चीज नहीं है, वो चल रही है तो जिंदगी है, ये तो हम गए। अब बहुत लोग मर जाते हैं और बहुत लोग जो हम कहें कि कुछ उपलब्ध कर लेते हैं वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि एक उपलब्धि और बात खत्म हो गई, और उनके मरने का भी कारण ये है कि बहुत कम है ये उपलब्धि। जो मैं कह रहा हूं कि अगर इसके अनंत फैलाव हो और हर व्यक्ति उपलब्ध कर रहा हो तो कोई इतने जल्दी ठहरेगा नहीं, कोई नहीं ठहरेगा, लेकिन अभी ठहर जाता है क्योंकि पीछे लोग दिखाई पड़ते हैं कि आ गए हम एक शिखर पर जहां कोई भी नहीं है, बात ठीक है तो खत्म हो गया है। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगता कि हम कभी भी अपने को पा लेते।
जो प्रतिभा का जहां स्वभाव है, ऐसे व्यक्ति जिनके हमें दर्शन हुए, जिनके साथ गांधी टैगोर अरविंदो, इनकी प्रतिभा को आप संपन्न मानते हैं तो हम लोग थोड़ा उनसे आपका जानना चाहेंगे कि उनकी प्रतिभा जो थी देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, उनके खुद के लिए, वो प्रतिभा संपन्न थी या नहीं।
असल में 2-3 बातें पूछ रहे हैं आप। पहली तो बात ये है कि प्रतिभा सदा उस व्यक्ति के लिए ही सार्थक और संपन्न होती है जिसकी है, और दूसरों के लिए सदा बांधने वाली सिद्ध होती और रोकने वाली सिद्ध होती। प्रतिभा जो है वो जिस व्यक्ति के भीतर है उसके लिए तो समृद्धि और सार्थकता देने वाली होती, लेकिन दूसरों को सदा बांधने वाली और रोकने वाली सिद्ध होती। अब तक ऐसा होता रहा। जैसे गांधी जी की प्रतिभा गांधी जी के लिए तो एक आनंद है, लेकिन गांधीवादियों के लिए बिल्कुल कारागृह है, उनको बांध गई बुरी तरह, कस गई बुरी तरह। तो मैं जिस प्रतिभा की बात कर रहा हूं, मेरा कहना ही यह है कि ऐसी मनोदशा होनी चाहिए समाज की कि प्रतिभा का आदर हो, स्वागत हो, सम्मान हो, अनुगमन न हो, उसके पीछे कोई न जाए, क्योंकि जब भी प्रतिभाशाली के पीछे आप गए तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं, आप मिटे, आपका व्यक्तित्व गया, आप गए, आप खत्म। और इसलिए अनुयायी बनना मैं सुसाइडल मानता हूं, किसी का भी, बड़े से बड़े का भी। और इसलिए दुनिया में हमेशा जब बड़े लोग होते हैं, जैसा अब तक हुआ है, तो उनके पीछे 10-25 साल के लिए बड़े अंधेरे का युग आता है, उसका कारण है वो बड़े लोग इस तरह बुद्धि को कुंठित कर जाते हैं कि 10-50 साल लग जाते हैं उनसे छूटने में, फिर उनसे बचने में, यानी अब गांधी से बचने में 50 साल लगेंगे इस मुल्क, जब कहीं झंझट छूटेगी तब। और मजा यह है कि गांधी से छूटने की जरूरत न पड़ती अगर आप न बनते तो, यानी ये सवाल गांधी से छूटने का नहीं, आप बन गए इसलिए उपद्रव है। गांधी ठीक है, अद्भुत व्यक्ति है, बात खत्म हो गई है। अरविंद ठीक है, रविन्द्रनाथ ठीक है, और ऐसे 1000 लोग होने चाहिए, 1,00,000 लोग होने चाहिए। फिर जब हम पूछते हैं ये बात तो हमारे मन में ख्याल ही ये होता है कि क्या इनका अनुगमन किया जाए। गांधी अगर ठीक है तो हम पूछते हैं इसलिए कि क्या इनके पीछे चले। मैं मानता हूं कि कोई भी ठीक हो सकता है लेकिन पीछे चलना कभी ठीक नहीं है। और ठीक होना व्यक्तिगत निजी घटना है, आप पीछे नहीं जाना है आपको, आप पीछे गए कि आप गए बुरी तरह गए। और अब तक ऐसे हुआ है कि बड़ी प्रतिभाओं से हमें फायदा तो कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ है। फायदा हो सकता था अगर हम उन्होंने उनकी इंडिविजुअल यूनिकनेस में स्वीकार किया होता, हमने कहा होता कि राम राम है बहुत अद्भुत है, और कृष्ण कृष्ण है बहुत अद्भुत है, और बुद्ध बुद्ध है बहुत अद्भुत है, और सौभाग्य की पृथ्वी पर हुए और हमने उन्हें देखा और जाना। लेकिन हम इस चक्कर में पड़ गए कि हम बुद्ध कैसे हो जाएं, तो हम एक नकली बुद्ध हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई दो आदमी न तो एक जैसे हैं और न हो सकते हैं, न कोई संभावना है, कोई मार्ग भी नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे जैसे होने की कोशिश की तो वो सिर्फ आवरण ओढ़ सकता है और आत्मा को हत्या करेगा, तभी दूसरे जैसा हो सकता है। और अब तक के सारे महापुरुष दुखदाई सिद्ध हुए, सुखदाई हो सकते थे हो नहीं पाए, और जहरीले सिद्ध हुए, क्योंकि हमारी पकड़ ये रही कि उनका अनुगमन करो, उनको मान के चलो, उन जैसे हो जाओ। फिर दूसरी बात यह है कि प्रतिभाशाली जो भी कह देता है वो प्रतिभाशाली है इसलिए ठीक नहीं हो जाता। ठीक होना जरूरी नहीं, प्रतिभा बिल्कुल गलत हो सकती और प्रतिभा हो सकती, यानी कुछ ऐसा नहीं है जरूरी कि प्रतिभा है किसी के पास तो उसका ठीक होना भी अनिवार्य है। प्रतिभा पूरी हो सकती और बिल्कुल गलत हो सकती, आप मेरा मतलब सुन रहे हैं ना? तो और बहुत प्रतिभाएं गलत हुई, तो वो प्रतिभाएं तो इतनी हैं कि वो आकर्षित करती हैं, अभिभूत कर लेती हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। जी
गुरु और शिष्य के जो परंपरा
बड़ी खतरनाक है, परंपरा बड़ी खतरनाक है और बहुत नुकसान पहुंचाया है गुरुओं ने। मेरी समझ ये है कि अच्छी दुनिया होगी उसमें गुरु तो नहीं होंगे, शिष्य होंगे। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं इनको दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। गुरु तो नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी जिसको गुरु होने का ख्याल है पागलखाना भेज देने जैसा आदमी है। तो ये ख्याल पैदा हो गया कि मैं गुरु हूं, वो तो बिल्कुल उसका इलाज करवाना चाहिए, वो न्यूरोटिक है। लेकिन शिष्य दुनिया में होने चाहिए, शिष्य होने का मेरा मतलब है एटीट्यूड ऑफ लर्निंग, वो सभी में होना चाहिए। एक आदमी सीखे सीखे सीखे, सीखने की भावना तो शिष्य का मतलब इतना है कि सीखने का भाव, वो सीखे जितना सीख सके। और मजा यह है कि गुरु सीखने में बाधा डालते हैं, क्योंकि जब भी कोई गुरु बनता है तो बांध लेता है और सब और तरफ से सीखने के रास्ते बंद कर देता है। वो कहता है सीखो यहां से और कहीं से नहीं। तो महावीर को जिसने गुरु बना लिया वो मोहम्मद से नहीं सीख सकता, और मोहम्मद अद्भुत आदमी, उसे बहुत सीखने को है। और जिसने मोहम्मद को पकड़ लिया वो बुद्ध की तरफ आंख नहीं उठाएगा। और ये तो बड़े बड़े गुरु हैं, छोटे छोटे गुरु बहुत हैं, वो भी सब रोकते हैं। मेरा कहना यह है कि सीखने की क्षमता और सीखने का भाव प्रत्येक में होना चाहिए और मरने तक होना चाहिए। यानी जो आदमी जीवन भर शिष्य बना रहे मरते वक्त तक, वो अद्भुत आदमी है। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसा है कि आदमी जन्म से गुरु हो जाता है, मरने तक शिष्य रहना बहुत दूर की बात है। हाँ, जन्म से ही गुरु हो जाता है तो कम
था बंद गए।
शिष्यत्व तो बड़ी बहुत इनोसेंट और बहुत निर्दोष भाव है, बहुत अद्भुत भाव है, सीखने की तैयारी। इससे बड़ी सरलता और विनम्रता दूसरी नहीं हो सकती। तो एक मुसलमान फकीर था बायजीद, वो जब मरने के करीब है तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा है, मित्रों ने पूछा है कि आपने कहां से सीखा, कौन था गुरु? तो बायजीद ने कहा अगर गुरु होता तो बहुत कम सीख पाता, गुरु कोई भी ना था इसलिए बहुत सीखा, जो भी मिला उसी से सीखा, और ऐसा भी नहीं था कि आदमी से सीखा, दरख्त से सूखा पत्ता गिर रहा था तो उससे भी सीखा, कल ये पत्ता हरा था और आज सूख कर गिर गया, और मैं रास्ते भर सोचता चला आया उस गिरे हुए पत्ते को देख के कि गिरना पड़ेगा, हरे कब तक रहोगे, सूखना पड़ेगा, और उस पत्ते को मैंने नमस्कार कर लिया कि आज तू अच्छे वक्त पर गिर गया कि मैं निकलता था, तेरी बड़ी कृपा है, नहीं तो ये ख्याल ही ना आता, सूखा पत्ता कल तक हरा था और कितनी अकड़ और शान में था, फिर सूख के गिर गया, और उसके सूखने की गिरने की खबर वृक्ष को हो भी नहीं पाई, खबर भी नहीं हुई, किन्हीं पत्तों ने शोर भी नहीं मचाया कि कहां जाते थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप गिर गया जमीन पर पड़ा है, तेरी बड़ी कृपा कि तू गिर गया जब मैं गुजरता था, क्योंकि समझ में आई ये बात कि अभी हरे हैं कल सूख जाएंगे। वो बायजीद ने कहा कि एक बार मैं गांव में गया, रात के कोई 12 बज गए, गांव भटक गया रास्ता, तो गांव में कोई नहीं मिला, एक चोर मिला, वो अपनी चोरी को निकला था, तो मैंने उससे पूछा कि मित्र रास्ता बता सकोगे, मैं कहां जाऊं कहां ठहरूं, रात अंधेरी है मुझे ठहरने का कुछ पता नहीं। उस चोर ने कहा कि तुम साधु मालूम पड़ते हो, क्योंकि साधु होना ऊपर से दिख जाता है, लेकिन मेरा तुम्हें पता नहीं तुम किससे पूछ रहे हो, मैं चोर और चोर होना कभी ऊपर से नहीं दिखता, वो तो भीतर होता है, तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं चोर हूं, और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मेरे घर ठहर सकते हो, घर खाली हो मैं रात भर तो बाहर रहूंगा, तुम निश्चिंत हो। उस बायजीद ने कहा अपने मित्रों से कि मैंने उस दिन पहली दफा जाना कि एक चोर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि कह दे कि मैं चोर और मैं साधु हूं, लेकिन मैं हिम्मत से कह नहीं सकता कि मैं साधु हूं, क्योंकि भीतर मेरे चोर मौजूद है, और उस आदमी के भीतर साधु जरूर मौजूद था, तभी वो कह सका कि मैं चोर हूं, नहीं तो कहना बहुत मुश्किल था, एकदम मुश्किल था। तो मैंने उसके पैर छू लिए, वो कहने लगा ये आप क्या करते हैं, ये आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि मैं तेरे पैर छूता हूं, क्योंकि चोर स्वयं को कहने की हिम्मत सिर्फ साधु में होती, चल मैं तेरे घर चलता हूं। मैं उसके घर गया, वो मुझे सुला के चला गया, और 5 बजे के करीब फिर लौटा, नींद खुली तो मैंने पूछा कुछ मिला कुछ लाए, तो वो कहने लगा आज तो नहीं लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे, फिर आके वो सो गया, तो वो दिन भर सोया रहा, दोपहर को उठा तो बड़ा मस्त था, नाचता था गीत गाता था, तो मैंने उसे कहा तुझे कुछ मिला नहीं था? कल मिल जाएगा। फिर रात गया मैं, महीने भर उसके घर था, और हर बार ये हुआ कि सुबह वो आया और मैंने पूछा कि कहो कुछ मिला, आज तो नहीं मिला लेकिन कल फिर कोशिश करेंगे। फिर महीने भर के बाद मैंने छोड़ दिया उसका घर, फिर मैं भगवान की खोज में वर्षों भटकता रहा, और बार बार ऐसा होने लगा कि अब नहीं मिलता तो छोड़ दो ये ख्याल, तभी उस चोर का ख्याल आ जाता कि वो आदमी रोज लौट के कहता था कि कल फिर कोशिश करेंगे, तो वो तो साधारण धन चुराने गया था, और फिर भी हिम्मत बड़ी थी, हम भगवान को चुराने चले और हिम्मत बड़ी कमजोर कैसे काम चलेगा। तो फिर मैं टिका ही रहा, और जब भी हारने लगता मन तब फिर उस चोर का ख्याल आ जाता, वो कहता कि कल और कोशिश करेंगे, तो उसी चोर को उस चोर से जो सीखा था उसी से मैंने परमात्मा को पाया, नहीं तो पा नहीं सकता। तो उसने मरते वक्त ऐसी बहुत सी बातें कही, जैसे बहुत से गुरु मिले। एक गांव से गुजरता था, एक छोटा सा बच्चा दिया लिए जा रहा, पूछा उससे कहां जाते हो दियो को लेकर, उसने कहा मंदिर में चढ़ाने। तो मैंने उससे कहा कि तुमने ही जलाया है दिया, उसने कहा मैंने ही जलाया। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुमने ही जलाया तो तुम्हें पता होगा कि रोशनी कहां से आई, कहां से आई बता सकते हो? उस बच्चे ने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, फूंक मार के रोशनी बुझा दी और कहा कि अभी आपके सामने चली गई, बता सकते हैं कहां चली गई? और आप बता देंगे कहां चली गई तो मैं भी बता दूंगा कहां से आई, क्योंकि मैं सोचता हूँ वहीं चली गई होगी जहां से आई थी। बच्चे ने कहा वहीं चली गई होगी। तो बच्चे के पैर छूने पड़े, कोई उपाय न था, इसके साथ नमस्कार करनी पड़ी कि तू अच्छा मिल गया, हमने तो मजाक की थी लेकिन मजाक उल्टी पड़ गई। मजाक की थी बच्चे से लेकिन बहुत उल्टी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई। और अज्ञान एक बुरी तरह दिखाई पड़ा कि ज्योति का पता नहीं कि कहां से आती और कहां जाती। और बड़े ज्ञान की हम बातें किए चले जा रहा हूं। उस दिन से मैंने ज्ञान की बातें करना बंद कर दिया। क्या फायदा जब एक ज्योति का पता नहीं है तो भीतर की ज्योति की बातें कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो फिर मैं चुप रहने लगा। उस बच्चे ने मुझे चुप करवाया। हजारों किताबें पढ़ी थी जिनमें लिखा था मौन रहो, नहीं रहा। लेकिन उस बच्चे ने था चुप करवा दिया। जो कई वर्ष बीत गए मैं नहीं बोला। लोग पूछते थे बोलो, तो मैं लिख देता था कि दिए की ज्योति कहाँ जाती है तो बताओ। बोलने तो क्या मतलब, क्या है बोलने से, ये कुछ पता ही नहीं तो बोलूं क्या। तो इसको मैं कहता हूँ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग और डिसाइपलशिप, शिष्यत्व। तो गुरु तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए दुनिया में, और शिष्य सब होने चाहिए। और अभी हालत ये है कि गुरु सब हो, शिष्य खोजना बहुत मुश्किल मामला है। वो मिल ही नहीं सकता, वो मिल ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल नहीं मिल सकता।
हमने बहुत तारीफ सुनी आपकी। हमारे भाई साहब करते ही हैं, आप भी हैं, जो सब जितने हमारे मित्र करते हैं। और हमें ये उत्सुकता होती है जानने की कि आप प्रोफेसर थे, क्या करते थे, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से आपने ये चालू किया। जरा
लोग जानना तो ये चाहते थे, हम लोग इधर उधर टाल मटोल कर रहे थे, लोग जमा हो रहे हैं
आपके बारे में, जो पिछले टाइम हमने टैग किया था और टेप करना था, टेप भी है।
लोगों के ख्याल आता है, चैनलाइज करने का कब से ख्याल आया आपको, कब से शुरू किया आपने, किस ख्याल से शुरू किया और क्यों शुरू किया? बस से भी करने जाएगी, वो तो हो ही गया एक्चुअली, वो तो फल है। वृक्ष कैसे निकला, बीज क्या था?
बहुत ही कठिन बात है आप जो पूछते हैं, कठिन कई कारणों से। एक तो ये कि जिंदगी कुछ ऐसी चीज है कि वो ठीक कहां से शुरू होती है कभी नहीं बताया जा सकता। यानी जहां से हम उसे शुरू होता हुआ कहते हैं वो हमेशा माना हुआ बिंदु होता है। और दूसरी कठिनाई ये है कि अपने संबंध में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल मामला है, बहुत कठिन।
ये सही है।
हाँ, इसलिए कठिन है कि दूसरे को हम बाहर से देखते हैं तो तस्वीरें अक जाती हैं, प्रतिबिंब होते हैं हमारे पास। कल ऐसा था, परसों हम अपने को कभी देखते ही नहीं, और भीतर अपनी कोई तस्वीर नहीं अकती है। वहां तो एक धारा ही होती है। अलग अलग स्नेप्स नहीं होते हैं, तो भी मुश्किल हो जाता है। और फिर जब भी हम बताने जाते हैं तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम बताने जाते हैं तो कुछ खंडों को ही छू पाते हैं और बीच के हिस्से गैप रह जाते हैं, और उनमें कई बार जोर दिखाई भी नहीं भी पड़ता है। जैसे कि कोई सीढ़ियों जा रही हूं हजारों, और उसमें से हम 10-5 सीढ़ियां चुनकर बता दें, बीच की सीढ़ियां गिर जाए, तो उन सीढ़ियों के बीच कोई तो कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता। फिर भी कोशिश की जा सकती है कि क्या जो पहली से पहली मुझे ख्याल में आती है बात, चारों तरफ एक अद्भुत झूठ का बोध होना शुरू हुआ। जो पिता कह रहे हैं उसमें, जो मां कह रही है उसमें, जो मित्र कह रहे हैं उसमें, जो शिक्षक कह रहे हैं उसमें, जो मंदिर का पुजारी कह रहा है, जो नेता कह रहा है उसमें, ऐसा लगा कि चारों तरफ एक गहरा झूठ सबको घेरे हुए। और ये भी समझ में आना शुरू हुआ कि वो झूठ मुझे भी घेर रहा है। यानी मैं जिस ढंग से देखता हूं वो झूठ था, क्योंकि भीतर से मैं कुछ और ढंग से देखना चाहता था। और जो बात मैंने कही वो थी नहीं। रास्ते पे एक आदमी मिला और उसने कहा कि नमस्कार, आपको देख बड़ी खुशी हुई, भीतर मन हो रहा था ये आदमी कहां से दिख गया सुबह सुबह, कहीं दिन खराब ना हो जाए। तो ये भी दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि वो चारों तरफ का जो झूठ है वो मुझको भी पकड़े ले रहा है, और अगर जल्दी जागे नहीं तो शायद वो पकड़ ही लेगा, फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सब तरफ से घेरे लिए चला जा रहा है, जिससे कोई प्रेम नहीं उससे कह रहे हैं बहुत प्रेम है। जो मुझे पहला बोध होना शुरू हुआ बहुत छोटी उम्र से वो ये था कि अजीब झूठ चारों तरफ पकड़े हुए, कि घर में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने छोटे बच्चों को बाहर मुझसे कहलवा देते हैं कि वो घर पे नहीं है, या मुझे बाहर भेजते हैं देखने के, देख लेना कौन है, अगर फला आदमी हो तो कहना कि घर में है, और फला आदमी हो तो कहना कि घर में नहीं। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये घर में होना भी फला फला आदमी पे निर्भर होता है, या ये घर में होना कोई सच्चाई है या ये भी झूठ है, जो कि कोई होता है तो आदमी घर में, कोई नहीं है तो घर में नहीं। मुझे जो पहला स्मरण आता है वो ये कि चारों तरफ सब चीजों में अजीब झूठ है। और मुझे मंदिर में ले जाया गया है, पत्थर की मूर्ति, मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ रही है, और मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि भगवान, और ये तब सरासर झूठ मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल पत्थर की मूर्ति है। इसको मैंने बाजार में बिकते भी देखा है, ये बाजार में खरीद के मंदिर में भी लाई जाती है, और भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मेरे घर के लोग हाथ जोड़े हुए खड़े, इनके हाथ जोड़ना एकदम झूठ मालूम पड़ रहा है, सरासर झूठ मालूम पड़ रहा है। जो मुझे पहला ख्याल आता है, जो मुझे बचपन से पकड़ना शुरू हो गया, वो ये कि एक फॉल्सहुड है जो चारों तरफ सबको पकड़े हुए, और जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे मुझे दिखाई पड़ने लगा कि सब तरफ एकदम घना झूठ है। और अब दो ही उपाय है, अगर या तो ये झूठ मुझे पकड़ लेगा, और अगर झूठ पकड़ लेता है तो फिर जीवन में सत्य के खोज का कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो जिंदगी क्या है उसका पता ही नहीं चलेगा कभी, और पता ही नहीं चलता। वो मैं पीछे कह रहा था कल्याण जी भाई को, एक लंदन में एक फोटोग्राफर था, वो अपने दरवाजे पर एक तख्ती लगाए हुए और उसमें उसने दाम लिख रखे हैं, और लिख रखा है कि आप जैसे हैं अगर वैसे फोटो उतरवानी हो तो 5 रुपया, और जैसे आप दिखाई पड़ना चाहते हैं अगर वैसे फोटो उतरवानी हो तो दाम 10 रुपया, और जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं अगर वैसे फोटो उतरवानी हो तो दाम 15 रुपया। एक आदमी गए ना उसकी दुकान पर, उसने कहा कि बड़ी मुश्किल है, हम तो सोचते थे फोटो एक ही तरह की होती, मेरी फोटो एक ही तरह की होगी, 3 तरह की कैसे हो सकती, और यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं कि पिछली 15 और 10 रुपए वाली फोटो उतरवाते हैं। तो उस फोटोग्राफर ने कहा आप पहले आदमी हैं जो पहले नंबर की फोटो उतरवाने का ख्याल कर रहे हैं, यहाँ अब तक कोई आया नहीं जिसने पहले नंबर की फोटो उतरवाई। ये मुझे बहुत एकदम से गहरा पकड़ने लगा रोज रोज, और बड़ी अड़चन हो गई उससे शुरू, बहुत अड़चन हो गई, बहुत परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि जहां जहां वो मुझे दिखाई पड़ने लगा वहीं मुश्किल शुरू हो गई। घर के बुजुर्गों को कहने लगा कि ये क्या मामला है, शिक्षकों को कहने लगा ये क्या बात है, और तब एक बात मुझे इतनी साफ दिखाई पड़ने लगी कि ये अगर झूठ मुझे पकड़ लेता है तो जिंदगी खो गई। तो जैसा हूं वैसे ही दिखाई पड़ूं, और जैसा मुझे दिखाई पड़े वैसे ही कहूं, और जैसा मुझे ठीक लगे उसको वैसे ही जीवता है, उसका कोई भी परिणाम हो। एक बात पक्की है कि मैं झूठ होने को राजी नहीं हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो फिर किसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो गया, कि भगवान है, कि आत्मा है, कि पिछला जन्म है, कि कर्म है, किसी चीज पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। और प्रत्येक चीज पर, क्योंकि सब विश्वास मुझे झूठे मालूम पड़े, ऐसे में विश्वास झूठ का दूसरा नाम है, जो आपको नहीं मालूम होता, नहीं दिखाई पड़ता, उसको मान रहे हैं तो झूठ। इतना पढ़ा मैंने कि कहीं से कुछ पता चल जाएगा, इतने लोगों के पास गया, इतने लोगों से मिला, इतना भटका कि कहीं से कोई बता सकेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि कोई दूसरा शायद बता भी नहीं सकता। एक बात पक्की मेरे मन में हो गई कि विश्वास नहीं करूंगा, जान लूंगा तो जान लूंगा, नहीं जानूंगा तो अज्ञानी रहूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। और इसने तो कुछ ऐसी हालत में पहुंचा दिया था कुछ दिन के, घर के लोग समझते थे मैं पागल हो गया, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी मुझे शक होने लगा कि जैसे मेरे पिता हैं, तो मैं उनसे पूछने लगा कि उसको मैं कैसे मानूं कि आप मेरे पिता, मुझे क्या पक्का है, मुझे क्या पक्का है और क्यों मानूं। और जब कोई चीज पर विश्वास न करने की सख्त हिम्मत कर ली, जो अड़चन होनी थी वो स्वाभाविक थी, सब तरफ अड़चन हो गई, और साथ ही एक भीतर एक वैक्यूम आना शुरू हो गया। जब हम किसी चीज पर विश्वास ही ना करें तो भीतर कौन सी चीज को पकड़ें, किसको पकड़ें, क्या है भीतर, कोई पकड़ने का उपाय नहीं रहा कि कोई सहारा बना लें, कोई विचार पकड़ लें, कोई धर्म पकड़ लें, कोई संप्रदाय पकड़ लें, कुछ मामला नहीं रहा, कोई किताब गीता कुरान कोई सहारा बन जाए। तो भीतर एक वैक्यूम आया, वो कोई एक वर्ष में बिल्कुल वैक्यूम नहीं था। वैक्यूम में मतलब आप आके बैठ गए हो, मुझे पता नहीं कि आप आ गए, आपको देख रहा हूं कि आप आ गए, आप बैठे, आप चले गए, लेकिन कल आप मुझे पूछें कि मैं आया था तो मुझे पता नहीं। यानी आंखें बिल्कुल ऐसी होगी जैसे दर्पण हो, कोई आया और कोई गया। और एक वर्ष तक शायद मैं ज्यादातर पड़ा ही रहा, उठा भी नहीं, क्योंकि ऐसा जब कोई भी विश्वास न रहा तो ये भी होने लगा, घर के लोग कहते कि खाना खा लो, तो मैं खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, क्योंकि खाना खाने से किसको क्या मिल गया है। कहते कि उम्र कम हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो मैं उनसे पूछता कि आपको पक्का भरोसा है कि आप खाना खाते रहेंगे तो मरेंगे नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं चल के खाना खा लू, आप मुझे ऐसा बता दें कि जो लोग खाना खाते रहे वो नहीं मरे, तो मैं भी खाना खा लेता हूं। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिंदा रह के आपको क्या मिल गया है जो मुझे जिंदा रहने की आप सलाह दे। धीरे धीरे घर के लोगों ने भी छोड़ दी फिक्र कि जो करना हो करो, जो ना करना हो ना करो। और तब उस वैक्यूम में मैं बिल्कुल ऑटोमेटा जैसा हो गया, यानी मैं उठ के क्यों जा रहा हूं कहां ये मुझे भी ख्याल में ना रहा, बस चीजें ऑटोमेटिक हो गई। प्यास लगी है तो जाके पानी पी लिया है, भूख लगी तो जाके चौकी में बैठ गया हूं, नहीं लगी तो दो दिन गुजर गया, चार दिन गुजर गया, स्नान करने गया हूं तो घंटों गुजर गए, दिन गुजर गया, स्नान ही करता रहा। घर के लोगों ने समझा कि पागल हो गया, मुझे भी बीच बीच में शक एक ही बस दौड़ता था, सब खो गया था, बस एक ही बात दौड़ती थी कभी कभी दूसरे लोगों की आंखों में देख के कि शायद मैं पागल हो गया। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अगर इस खोज में पागल ही हो जाना है तो पागल हो जाना भी ठीक है। वो शून्य जितना बढ़ता चला गया, करीब दो या तीन बार में कोई कई दिनों तक कोमा में चला गया बिल्कुल, दो चार दिन बेहोशी पड़ा, होश ही नहीं। एक वर्ष, लेकिन मैंने इससे भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने सख्त मान ये लिया था कि जो भी हो मैं जानना ही चाहता हूं, या मर जाऊं या जान लू। एक वर्ष तक निरंतर इस शून्य में गुजरते गुजरते एक दिन आधी रात होगी जिसमें एकदम से उठ पड़ा हूं, और कोई तीन दिन से बेहोश था, और जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया भीतर, कोई चीज एकदम से फूट गई, कोई बंद द्वार खुल गया, कोई दिया एकदम से जल जाए और अंधेरे में चीजें दिखाई पड़ने लगी। वो हुआ, उस होने के बाद सब बदल गया, उस होने के बाद मैं एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम चुपचाप सीधा नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद कोई अविश्वास ना रहा, कोई विश्वास भी ना रहा, दोनों ही चले गए, दोनों ही चले गए, और एक सीधी दृष्टि हो गई। अब मेरे पास कोई पक्का नहीं है मुझे ख्याल की क्या कहूंगा आपसे, आप कोई बात पूछ लेते हैं तो मुझे दिखाई पड़ने लगता है, और जो मुझे दिखाई पड़ता है वो आपसे कह देता, उसमें मुझे भी पता नहीं कि शब्द के बाद दूसरा शब्द क्या आएगा और इसके बाद क्या कहूंगा, ये मुझे कुछ पता नहीं है। और जब कोई नहीं तब मैं बिल्कुल खाली हूं, जब कोई आ गया है तो सोच विचार खत्म ही हो गया, यानी बस बोल रहा हूं तभी विचार है, नहीं बोल रहा हूं तब बिल्कुल बिल्कुल मौन। लेकिन इतनी अद्भुत शांति और ऐसे आनंद का अनुभव हुआ कि मैंने ईश्वर का अर्थ ही यही कर लिया और जीने का एक बिल्कुल ही नया, मैं ना खाना भी खा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि खाना मुझे कोई छोटा आनंद है, उतनी आनंद है जितना परमात्मा का, इसमें फर्क नहीं। आपसे बात कर रहा हूं तो आनंद मुझे उतना ही जितना परमात्मा से बात करूं, उसमें मुझे फर्क नहीं है। सो रहा हूं तो उसमें भी आनंद है। अब जो भी कर रहा हूं, यानी अब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे लिए धार्मिक कृत्य है और कोई अधार्मिक कृत्य है, और कोई सांसारिक बात है और कोई पारलौकिक बात है, छोटी से छोटी चीज में और सब चीजों में रस है। ऐसी किसी चीज में मुझे विरस हुई नहीं, वैराग्य जैसी चीज ही नहीं है मुझे किसी चीज में कि मुझे विराग है किसी चीज से भी, सभी चीजों में। और मैं तो इतना हैरान हुआ हूं कि अब तो मैं वैराग्य की परिभाषा ही ये करने लगा हूं कि राग अगर पूर्ण हो जाए तो वैराग्य हो जाए, और स्वाद अगर पूर्ण आ जाए तो स्वाद से मुक्ति हो जाती है। तो अब तो जो भी चीज हो उसे कैसा पूरा, उसमें पूरी डूब जाता हूं। खाना खा रहा हूं तो पूरे खा रहा हूं, यानी उस वक्त मैं खाना ही खा रहा हूं, सिर्फ कुछ और नहीं कर रहा हूं, सो रहा हूं तो सिर्फ सो ही रहा हूं। कल की कोई बात करता है तो ही मुझे कल का ख्याल आता है, नहीं तो कल जब आएगा जब उससे देख लेंगे। अभी जो है आपके घर ठहरता हूं तो आप ही मेरे परिवार के, मुझे याद ही नहीं आता किसी और का फिर, और आपका घर छोड़ के गया तो फिर मुझे आप याद ही नहीं आते कभी, फिर आऊंगा दोबारा तो फिर ऐसे लगेंगे कि आप ही के साथ था सदा, और बिल्कुल याद आ जाएंगे, पूरे याद आ जाएंगे। किसी को भूलते ही नहीं और किसी को याद भी नहीं करता कभी, यानी एक तो न भूलना वैसा होता है कि हम किसी को याद करते रहते हैं तो नहीं भूलते, मैं कभी किसी को याद ही नहीं करता, बस जब वो सामने जाता तो याद आ जाता, जब वो चला जाता उसी के साथ उसकी याद भी चली जाती, एकदम जैसे खाली मकान हो वैसी हालत हो गई। लेकिन अद्भुत, और न कुछ छोड़ने का मन है ना कुछ पकड़ने की बात, न किसी के पक्ष में हूं ना किसी के विपक्ष में, और ये भी पक्का नहीं कि जो आपसे कहता हूं उसका आग्रह भी नहीं है कि वो उसे कोई माने, क्योंकि मैंने तो सब न मान के एक दिशा पाई, इसलिए वो लोगों को कहता रहता हूं कि जहां तक बने किसी को मानना मत, मुझको भी मत मानना, मानना ही मत, और न मानने में ठहरने की कोशिश करना, और अगर ठहर गए कभी न मानने में तो वो हो जाएगा जो जानना है, और मानने वाला कभी जानने तक नहीं पहुंचता। और जिस दिन से ये हुआ उस दिन के पहले मैं किसी से बात ही नहीं करता था, यानी आप मुझसे बात करवाना ही मुश्किल थी, यानी ऐसा भी हो जाता था कि कोई मित्र आ गया है और जबरदस्ती मुझे हिला रहा है और वो कहता है कि इस बात का जवाब दो, मैं बैठा उसे देख रहा हूं कोई जवाब ही नहीं, और ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं कहता हूं, नहीं कहूंगा, मुझे कोई रुचि भी नहीं थी किसी और में। लेकिन उस विस्फोट के बाद एक और अजीब घटना घटी, और वो ये अनुभव होना शुरू हुआ कि आनंद को जितना बांट दो वो उतना बढ़ जाता है। तो अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी के माइंड को चैनलाइज कर रहा हूं, जैसे आप पूछते, किसी के माइंड को चैनलाइज नहीं कर रहा, मुझे जो लगा है वो कह देता हूं और अपने रास्ते पे चला जाता हूं। फिर उस कहने के पीछे ये भी नहीं कि आपने उसे माना पकड़ा स्वीकार किया, आपसे कोई संबंध ही नहीं बांधता कि कोई मेरा शिष्य हुआ कि कोई अनुयायी हुआ कि कोई मेरा साथी हो गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है बात, और ख्याल ही नहीं है। बस बात इतनी है कि आपने मुझे सुन लिया, मेरी बात सुन ली, और मेरे भीतर जो कि कोई बादल भर जाए पानी से, तो बरस के कोई धरती पर कृपा नहीं करता बल्कि धरती कृपा करती है कि बरस जाने देती।
समता करने की दृष्टा तो नहीं करता, लेकिन ये कृष्णमूर्ति के विचार और आपके विचार जहां से बरसता है
मिल सकते हैं, बहुत से विचारों से मिल सकते हैं जी कृष्णमूर्ति के ही।
उनका बिलीव नहीं है,
दुनिया में कोई समझदार आदमी का कभी फॉलोअर में ख्याल नहीं रहा, कभी नहीं रहा। लेकिन फॉलोअर सभी को मिल जाते हैं, जय कृष्णमूर्ति को भी और सबको। विचार मेल खा सकते हैं बहुत से। सच तो यह है, यानी मेरा कहना तो यह है कि अगर मैं कुछ जान रहा हूं तो ये हो ही नहीं सकता कि वो दूसरे जानने वालों से मेल ना खाता हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर मैं जान रहा हूं तो वो मेल खाएगा ही। ये हो सकता है कि युग बदलते हैं, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, कहने के ढंग बदल जाते हैं, और फिर एक एक व्यक्ति के साथ अपना अपना माध्यम होता है। अब बुद्ध और महावीर एक ही साथ थे बिहार में, और कई बार ऐसा हुआ एक ही गांव में ठहरे, और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ही धर्मशाला के आधे से बुद्ध ठहरे आधे महावीर ठहरे, और दोनों ऐसी उल्टी बातें बोलते हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही बात बोल रहे हैं। और मुझे किसी ने पूछा कि जब एक ही गांव में और एक ही धर्मशाला में बुद्ध महावीर ठहरे तो मिले क्यों नहीं, उन्होंने कहा मिलने की कोई जरूरत नहीं। मिलने की जरूरत वही होती है जहां कुछ भेद होता है, भेद नहीं था, मिलने की कोई जरूरत नहीं। शब्द बिल्कुल अलग अलग और शब्द उल्टे भी। महावीर कहते हैं आत्मा को पालना सबसे बड़ा ज्ञान है, और बुद्ध कहते हैं आत्मा को मानने से बड़ा अज्ञान, उल्टा कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, उनके कहने का रास्ता बिल्कुल दूसरा है। महावीर कहते हैं आत्मा को पालना सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम नहीं हो आत्मा, तुम अहंकार हो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो तो आत्मा मिल जाएगी। और बुद्ध आत्मा ही को अहंकार कहते हैं, वो कहते हैं आत्मा को छोड़ दो तो वो मिल जाएगा जो है, और तब कोई दिक्कत नहीं रह जाती। असल में दुनिया में जिन्होंने भी कुछ कभी जाना हो उनके शब्द में रत्ती भर का भी भेद नहीं हो सकता, होने का कोई उपाय नहीं। अगर भेद दिखता हो तो वो हमको दिखता है, वो हमको दिखता है भेद, क्योंकि हमारे पास सिर्फ शब्द होता है, अनुभूति नहीं होती, और शब्द में भेद हो सकते हैं, अनुभूति में कोई भेद नहीं। जब हम कहने जाते हैं तो भेद शुरू हो जाते हैं। लाओस से जिंदगी भर नहीं लिखा कुछ, बहुत लोगों ने कहा कि लिखो, तो उसने कहा पहले बहुत लोग लिख चुके हैं, उससे कुछ फायदा हुआ? और अगर उससे फायदा नहीं हुआ तो मुझसे और क्यों कुछ कागज खराब करवाते हो, तुम रहने दो, मैं नहीं लिखता। 80 वर्ष का हो गया तो छोड़ के जा रहा था चीन, तो उसके गांव के चुंगी पर रुकवा लिया सम्राट ने चीन के, और कहा कि ऐसे नहीं जाने देंगे, वो जो तुम जानते हो लिख जाओ। तो उसने कहा मैं लिख ही देता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं पहली तो बात उसको लिख नहीं सकता, और दूसरी बात अगर कोई तरह से कोशिश भी करूं तो तुम उसको पढ़ कभी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही पढ़ सकते हो जो तुम जानते हो, ज्यादा तुम कैसे जानोगे। और मुझे एक आदमी नहीं दिखाई पड़ता, उसने कहा, जो मेरी किताब पढ़ के जान लेगा, तो क्यों मेहनत करवाते हो। लेकिन नहीं माना तो उसने किताब लिखी, ताओ ते किंग, एक छोटी सी किताब लिखी, इससे छोटी किताब नहीं है दुनिया में, और इससे कीमती किताब भी नहीं है। और कीमती इस लिहाज से कि पहले वाक्य उसने लिखा कि मुझे बड़ी दिक्कत में डाल रहे हो, सत्य कहा नहीं जा सकता और मैं कहने जा रहा हूं, और जैसे ही कहा जाता है वैसे ही सब गड़बड़ हो जाता है। वो जो जन्म है वो इतना बड़ा है और शब्द इतना छोटा है कि जैसे कोई सागर को जाने और एक प्याली में भर के आ जाए घर, तो जो घर ले आए और उससे किसी को बताए कि ये सागर रहा, तो प्याली में देखे वो सागर को और जितना जान ले उतना भी शब्द में नहीं जाना है। लेकिन जो भी जिन्होंने कभी जाना है वो एक ही है, वो दो हो नहीं सकता, शब्द बदलते रहेंगे, रोज बदलते रहेंगे। जो है कुरान में, जो है बाइबल में, महावीर में, बुद्ध में, वो यही है। लेकिन ये हम जाने तो ही ख्याल में आता, नहीं तो नहीं आता। और उसे अगर पाना हो, उसे अगर जानना हो, तो किसी को पकड़ मत लेना, महावीर को, बुद्ध को, या कृष्णमूर्ति को, या मुझे, या किसी को भी। पकड़ा कि खो गया, पकड़े की बासी चीज पकड़ ली और गए, तो सारी चेष्टा ये नहीं है कि मैं आपको कहकर कुछ समझा दूंगा, कहने की सारी चेष्टा ये है कि शायद थोड़ी सी बेचैनी आप में हो जाए और एक मूवमेंट शुरू हो जाए, गति हो जाए और कहीं आप चल पड़े, कोई यात्रा शुरू हो जाए। तो ये जो आप कहते हैं चैनलाइज नहीं कर रहा हूं,
नहीं मेरा मतलब हाँ। जो आप बोल रहे हैं करेक्ट है, इसका मतलब कोई लक्ष्य तो है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं देवानंद जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि लक्ष्य सिर्फ दुखी चित्त में होता है, सिर्फ दुखी आदमी के पास लक्ष्य होता है।
चार अगर इंसान या चार आदमी अच्छा सोचना चाहें, जरा सोचना चाहिए, लक्ष्य हो गया?
नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा सोचने लग जाएं जैसा सोचना चाहिए, तो फिर तो मुझे बताना पड़ेगा कैसा सोचना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं और जैसा लक्ष्य की बात उठाई तो बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि आमतौर से हमारा ख्याल ये है कि जो भी हम करते हैं उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए, और मजा ये है कि लक्ष्य भविष्य में होता है और करना वर्तमान में होता है, और वर्तमान और भविष्य कभी नहीं मिलते, मिलते ही नहीं, लक्ष्य सदा वर्तमान में होता है और करना सदा अभी होता है। इसलिए एक और तरह की जिंदगी भी है कि जहां करना ही लक्ष्य होता है, जैसे कि एक आदमी चला है कहीं जा रहा है, दिल्ली जा रहा है पैदल चल के, तो उससे आप पूछते कहां जा रहे हो, तो वो कहता है दिल्ली जा रहा हूं, लक्ष्य है। एक आदमी सुबह घूमने निकला टहलने, आप उससे कहते कहां जा रहे हो, वो कहता है जा कहीं भी नहीं रहे, घूम रहे। लक्ष्य तो वहां भी है लेकिन वो उसी के साथ जुड़ा है, बस उसके बाहर नहीं। जैसे वान गाग को किसी ने पूछा कि तुम किस लिए पेंट करते हो, उनका किस लिए, तुमने कभी चांद से नहीं पूछा कि तुम किस लिए हो, तुमने कभी फूलों से नहीं पूछा कि किस लिए खिलते हो, जैसा फूल खिलते हैं और जैसा चांद आकाश में होता ऐसा हम पेंट करते हैं, किस लिए नहीं, पेंट करना ही आनंद है। मैं जब आपसे बोल रहा हूं तो वो बोलना ही आनंद है, और आपने सुन लिया ये इतना बड़ा आनंद है कि इसके आगे और लक्ष्य बनाने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ बनेगा तो वो बनेगा, अपने से उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ हमारा प्रयोजन नहीं, मतलब हमारी नजर में वो नहीं है, तो मैं बिल्कुल लक्ष्यहीन आदमी हूं। और मेरा मानना है कि जिसने भी जिंदगी में लक्ष्य खोजा वो मुश्किल में पड़ेगा, और जिसने जिंदगी को ही लक्ष्य बन जान लिया, जीना ही रोज रोज पल पल जी लेना ही। जीसस के जीवन में घटना है कि वो गुजर रहे हैं एक बगीचे के पास, उनके मित्र साथ हैं और बगीचे में लिली के फूल खिले हैं, तो जीसस ने उन फूलों को देखा के कहा कि देखते हो लिली के फूलों को, सोलोमन सबसे बड़ा सम्राट था उनका, जैसे हमारे यहां कुबेर की कल्पना वैसे सोलोमन की, सोलोमन अपनी पूरी शान में भी इतना शानदार नहीं था जितना ये लिली के गरीब फूल है। तो किसी शिष्य ने पूछा कि कारण क्या है, तो उनका कारण यह कि सोलोमन कल के लिए जी रहा था, लिली के फूल अभी जी रहे, अभी इसी वक्त, कल है ही नहीं, कल से कोई लेना देना नहीं। लक्ष्य जो है वही आदमी के चित्त में टेंशन है, और जिस आदमी की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है।
राजा साहब बात क्या है, अब 25 साल पहले हमारे नेता गांधी जी जो आजादी हासिल की, लक्ष्य था कि आजादी लेनी, लक्ष्य नहीं होता आजादी नहीं मिलती,
बहुत बड़ी आजादी मिलती मेरा मतलब ना नहीं,
अंग्रेज बाहर नहीं जाता कहने का
ना, वो भी जाता कि नहीं, क्योंकि अंग्रेज के जाने से आजादी नहीं मिल जाती,
तो लक्ष्य था जो ले गया उनको अभी
ना, ना, बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। जहां तक जिंदगी की सामान्य दौड़ का संबंध है वहां लक्ष्य ही लक्ष्य है, और उन लक्ष्यों में जीने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि लक्ष्य में जीने वाला आदमी सदा दुख में जीता है, मेरा कहना यह है। जब
शायद
तक
अच्छा ही हो
ना, मैं कारण कहता हूं कि जब तक उसे लक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो दुख में जीता है, और जब लक्ष्य मिल जाता है तब एक नया दुख शुरू होता है कि अब क्या। लक्ष्य में जीने वाला जो माइंड है वो सदा दुख में जीता है, पहला तो जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक वो इसलिए दुखी होता है कि लक्ष्य नहीं मिलता, फिर जब लक्ष्य मिल जाता तब वो इसलिए दुखी होता है कि अब क्या, या वो नया लक्ष्य बनाए और तब फिर दुख में जीना शुरू करे। और दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो सदा लक्ष्य में जीते हैं, जो बिना लक्ष्य के एक मिनट जी नहीं सकते, जो अगर प्रेम भी कर रहे हैं तो भी लक्ष्य है, जो अगर गीत भी गा रहे हैं तो भी लक्ष्य है, जो कुछ भी कर रहे हैं तो लक्ष्य है। ऐसे आदमी हमेशा टेंशन में जीते हैं। ऐसे आदमी को मैं अधार्मिक आदमी कहता हूं, अधार्मिक, और उस आदमी को मैं धार्मिक कहता हूं जो जहां है वहीं जीता है। एक जैन फकीर हुआ बोकोजू, उसके पास एक आदमी मिलने गया और उससे पूछा कि तुम्हारी साधना क्या है। उस वक्त वो बगीचे में गड्ढा खोद रहा था, तो उसने कहा गड्ढा खोदना। तो पूछा तुम्हारी साधना क्या है, तो उसने कहा गड्ढा खोदना। ऐसी साधना कभी सुनी नहीं, यानी कि हम भी गड्ढा खोदें तो कहीं पहुंच जाएंगे। उसने कहा अगर कहीं पहुंचने के लिए गड्ढा खोदा तो फिर गड्ढा खोदना साधना नहीं रह जाए। हम कहीं पहुंचने के लिए खोज रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, और गड्ढा खोदने में बड़ा आनंद आ रहा। फिर भी उसने कहा कुछ मुझे बताओ कि मैं कैसे जीऊं। तो उसने कहा कि मुझे जब नींद आती तो मैं सो जाता हूं, और जब मेरी नींद खुलती तो मैं उठाता हूं, जब मुझे भूख लगती मैं खाना खा लेता, जब मुझे भूख नहीं लगती तो नहीं खाता, जब चुप होने का मन होता तो चुप हो जाता हूं, जब बोलने का मन होता तो बोलने लगता हूं। मैं एक सूखे पत्ते की तरह हो गया हूं, हवाएं उसे पूरब ले जाती तो पूरब चला जाता, पश्चिम ले जाती तो पश्चिम चला जाता, और हवाएं उसे जमीन पर गिरा देती वो विश्राम करने लगता है, और हवाएं उसे छाती पर उठा लेती और आकाश में चढ़ा देती तो आकाश में तैरने लगता है। मैं एक सूखा पत्ता हूं, मैंने जिंदगी को स्वीकार कर लिया है। एक तो है लक्ष्य से जीना, और साधारणता आदमी को वही सिखाया गया है कि लक्ष्य से जियो, धन कमाओ, यश कमाओ, पद कमाओ, ये बदलो वो बदलो, लक्ष्य से जियो। ऐसे ही सब आदमी जी रहा है, चाहे आजादी लाने वाला चाहे गुलामी लाने वाला, सब लक्ष्य से जी रहा है आदमी, सारी आदमी लक्ष्य से जी रही। कुछ थोड़े से लोग कभी ऐसे भी हैं जो लक्ष्य से नहीं जीते, सिर्फ जीते, अर्थात जीना ही लक्ष्य है। मेरा मानना है ऐसे ही लोग जीवन की परम कृतार्थता को उपलब्ध होते हैं, ऐसे ही लोग। और अभी तो ये छुटके व्यक्ति हैं छोटे मोटे, अगर किसी दिन कोई समाज भी ऐसे जिया तो वो समाज भी परम कृतार्थता को उपलब्ध होगा, ऐसा मेरा कहना है। और परम कृतार्थता को कोई तभी उपलब्ध होता है जब कल का कोई सवाल ही नहीं है, लक्ष्य का कोई सवाल ही नहीं है, और जब जीवन की छोटी से छोटी चीज भी आनंद बन गई है अपने में, यानी वो जूते भी साफ कर रहा है तो उतना ही आनंदपूर्ण है जितना प्रार्थना करना, और लक्ष्य कोई भी नहीं है। तो मेरी यानी मेरी समझ ये है कि अगर आनंद की दिशा में जाना हो तो लक्ष्य के ऊपर उठना पड़ता है, उसके बियॉन्ड जाना पड़ता है, और अगर दुख की दिशा में जाना हो तो लक्ष्य पकड़ के चलना पड़ता है, और दुनिया उसे पकड़ के चलती है, राष्ट्र चलते हैं, समाज चलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो चलना गलत है। वैसी गुलामी भी गलत है, वैसी आजादी भी गलत है, ये नहीं कह रहा, वैसी गुलामी भी गलत, वैसी आजादी भी गलत। और होता क्या है कि एक गलती को मिटाने के लिए दूसरी गलती लानी पड़ती, लेकिन दूसरी गलती इससे ठीक नहीं हो जाती। मैंने सुना है कि गांव में एक आदमी ने कांच साफ करने का धंधा शुरू किया, उसने एक पार्टनर रखा, वो पार्टनर पहले जाके लोगों के कांच गंदे कराता, कोलतार से काटता हूं, तीन दिन बाद वो आदमी निकलता सड़क से चिल्लाता हुआ कांच साफ करवा लो, लोग उससे कांच साफ करवाते हो, कहते तुमने बड़ी कृपा की, तुम आ गए बड़ी कृपा, बड़े परेशान थे, सब खिड़कियां गंदी हो। हर गांव में यही होता कि वो आदमी चार छह दिन पहले कांच गंदे कराता, फिर वो आदमी, वो दोनों एक ही धंधे के पार्टनर थे। ये गुलामी लाने वाले और आजादी लाने वाले एक ही धंधे के पार्टनर है, बहुत गहरे में दोनों लक्ष्य वाले हैं। वो भी एक लक्ष्य लेके ला रहे हैं, ये भी एक लक्ष्य लेके ला रहे हैं। मेरा मतलब सुने ना, वो गुलामी को मिटा रहे हैं, वो कोलतार पोत गया कोई, अब ये उसको मिटाने वाला आ गया। ये है सब पार्टनरशिप, एक ही बिजनेस है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी धंधे से मतलब नहीं, जिन्हें जीना ही काफी है। और मैं ऐसे लोगों को, अधिकतम लोग ऐसे हो जाए तो मानता हूं कि कभी एक ऐसा समाज भी बन सकता है जो बस जीता हो, तब स्वर्ग होगा। यानी मैं मानता हूं कि स्वर्ग और नरक में एक ही फर्क हो सकता है, अगर कहीं स्वर्ग और नरक है तो स्वर्ग में लोग सिर्फ जीते होंगे और नरक में लोग योजनाएं बनाते होंगे जीने की। कल आगे कभी। तो मैं तो बिल्कुल लक्ष्य हूं, मैं मानता हूं कि लक्ष्य की बात ही बुनियादी रूप से गलत है। और क्या करे आदमी कि किसी भी तरह से लक्ष्यहीन हो जाए, चाहे बांसुरी बजाए, चाहे पेंट करे, चाहे सड़क साफ करे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि ये मूवमेंट पूरी तरह से जिंदगी को घेर ले और ये मूवमेंट परफेक्ट एक्शन बन जाए, पूर्ण कर्म हो जाए। यही क्षण एक शरद बाबू की एक किताब है सिस्टर, उसमें एक लड़की है कमल, वो एक कलाकार है, उसको शादी करके आ गई है। जिस मकान में वो कलाकार रहता है उस लड़की को लेके आया तो मकान का मकान मालिक जो बूढ़ा है वो बहुत घबरा गया। लड़की बड़ी सुंदर है और बड़ी निर्दोष मालूम पड़ती है। तो वो जब दोपहर को कलाकार गया है तो उस लड़की को कहता है, पागल तुझे कुछ पता है कि ये आदमी और भी 10-5 औरतों को यहां ला चुका है, ये 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चलती है स्त्री, तूने ठीक से शादी कर ली कानून से, नहीं तो कल मुश्किल में पड़ जाएगी। उस लड़की ने कहा, हे भगवान ये तो बड़ा अच्छा हुआ, वो तो कहता था कि कानून से शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा शादी की क्या जरूरत, प्रेम काफी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, अगर हम कानून से शादी कर लेते तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि 3 महीने बाद जब वो छोड़ता तो छोड़ ना सकता, और जब छोड़ना चाहता तो छूटना तो हो ही जाता, सिर्फ कानून रह जाता। ये तो बड़ा अच्छा किया भगवान की कृपा। तो उस बूढ़े ने कहा, पागल तुझे पता नहीं ये सब प्रेम चुक जाएगा जल्दी। तो उस लड़की ने उस बूढ़े से कहा कि मालूम होता है आपने कभी प्रेम को जाना नहीं, क्योंकि जब प्रेम होता है तो क्षण काफी होता है, उसके आगे की क्षण की फिक्र किसको, वो तो जिसको प्रेम नहीं होता उसी को होती, आगे की क्षण की फिक्र कि कल भी प्रेम होगा कि नहीं, ये सिर्फ फिक्र पैदा ही तब होती जब आज प्रेम नहीं हो जाता है। उनका अभी तो प्रेम है और जब तक है, और जब नहीं होगा नहीं होगा, उपाय क्या है, अभी है और तुमने अच्छा बता दिया, अगर 15 दिन रहना है प्रेम तो फिर पूरा जी लूं, फिर एक क्षण खोना ठीक नहीं, क्योंकि 15 साल रहता तो आराम से भी जी सकते थे, और अगर 15 जन्म रहता तो और भी फुर्सत हो जाती, फिर कभी चूक भी सकते थे, बीच में छुट्टी भी रख सकते थे, अब वो सब नहीं रहा। तो 15 दिन होगा ना, तब तो एक क्षण मूल्यवान हो गया है। तो मैं मानता हूं कि चूंकि हम एकदम दुख में हैं और एकदम व्यर्थता में हैं और कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है कहीं भी काम में, इसलिए हम रस और आनंद को लक्ष्य में रख के सुविधा बनाते हैं जीने की, वहां रख लेते हैं कि कल होगा कल होगा, आज तकलीफ झेल लो, आज मुश्किल झेल लो, कल सब ठीक हो जाएगा, वो लक्ष्य मिल जाएगा तब सब ठीक हो जाएगा। आज की जीने की जो कठिनाई है उसे हम कल के लक्ष्य को बना के सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि आज जीना मुश्किल हो जाए। अगर आप लक्ष्य मिटा दें किसी का और आज जीवन दुख है तो फिर जिएगा कैसे, तो वो कल लक्ष्य बना के आज के दुख को झेलने का उपाय है लक्ष्य। लेकिन जब आज आनंद हो तो कल के लक्ष्य का सवाल क्या, कल है ही नहीं। यानी अगर बहुत ठीक से हम समझें तो कल दुख से पैदा होता है, और गहरे में समझें तो टाइम जो है वो दुख से पैदा होता है और आनंद में टाइम नहीं होता। अगर आप एक क्षण को भी आनंद में है तो फिर समय नहीं रह गया, समय है ही नहीं, और जब समय ना हो तो लक्ष्य कहां होगा, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में हो सकता है और भविष्य हो सकता है समय में, और वर्तमान समय का हिस्सा नहीं, भविष्य समय है और अतीत समय है, वर्तमान समय का हिस्सा है ही नहीं। तो मैं समय के 3 हिस्से नहीं करता, अतीत वर्तमान भविष्य नहीं, वर्तमान तो समय का हिस्सा ही नहीं है, समय का हिस्सा तो है भविष्य और अतीत, अतीत है स्मृति वो है समय, और भविष्य आशा कल्पना लक्ष्य वो है समय, और वर्तमान का क्षण तो बिल्कुल ही कालातीत है, अगर उसमें हम डूब जाए तो हम एकदम काल के बाहर है, चाहे हम किसी वजह से डूब जाए, चाहे कोई प्रेम के क्षण में, संगीत के क्षण में, किसी भी क्षण में डूब जाए, किसी सृजन के क्षण में डूब जाए, एक चित्रकार चित्र बना के डूब जाता है, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाते में डूब जाता है, एक संगीतक संगीत में डूब जाता है, और धार्मिक व्यक्ति मैं उसको कहता हूं जो 24 घंटे डूबा ही रहता है, चित्रकार चित्र बना के फिर बाहर आ जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है फिर वापस वही हमड्रम दुनिया में वापस लौट आता है, और धार्मिक व्यक्ति उसको मैं कहता हूं जो 24 घंटे उसमें ही डूबा रहता है, और ऐसा अगर डूबना हो तो फिर जिंदगी का प्रत्येक क्षण ही डूबाने वाला बने तब, और वो डुबा सकता है। और ऐसे डुबाने की प्रक्रिया को मैं साधना कहता हूं, यानी लक्ष्य छिन जाए जीवन से और क्षण गहरा हो जाए और जिंदगी फैलाव में ना हो। दो तरह की जिंदगी है, एक फैलाव की जिंदगी है, होरिजेंटल है, एक लकीर पर बिंदु रखे हुए हैं वो चले गए हैं आगे तक पीछे तक, और एक जिंदगी इंटेंसिटी में है, वर्टिकल है, ऊपर जाती है नीचे जाती, ऐसी आड़ी नहीं जाती। तो अगर वर्टिकल जिंदगी में जाना हो तो ये क्षण काफी है, इसमें से गहरा डूबा जा सकता है, ऊंचे से ऊंचा जाया जा सकता है, वो एक जाने का मार्ग ही अलग है और वहां प्रत्येक क्षण अपने में पर्याप्त है, अगले क्षण का सवाल नहीं है। और अगर ऐसे न जाना हो तो फिर होरिजेंटल गति है, एक क्षण से दूसरा क्षण, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, और पहले क्षण को इसमें गुजारो कि दूसरा क्षण आएगा तो जिएंगे, दूसरा इसमें गुजारो कि तीसरा आएगा तो जिएंगे, और ऐसे पूरी जिंदगी गुजारो और आखिर में मौत हाथ में आ जाती और कोई लक्ष्य नहीं आता हाथ में, आ सकता नहीं, क्योंकि लक्ष्य आ सकता था उसी वर्तमान में पकड़ लेने से, उतर जाने से। एक जर्मन मिस्टिक हुआ एक हार्ट, वो एक कहानी कहता था, वो कहता था एक आदमी ने ज्ञान इकट्ठा करने के लिए दुनिया की सारी किताबें इकट्ठी की। उसने सोचा कि किताबें इकट्ठी करूं ताकि ज्ञान मिल सके, ज्ञान लक्ष्य बनाया, किताबें संग्रह की। संग्रह करते 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 वो 7 साल का हो गया और किताबें अभी भी बहुत बाकी, और उसने कहा जिंदगी तो चुकी जाती है, वो ज्ञान कब होगा। किसी ने उसको कहा कि तू पागल किताबें जुड़ाता रहेगा। उसने कहा ज्ञान तो तभी होगा ना जब सब किताबें जुड़ जाएंगी, तो किताबें बहुत ज्यादा हैं और तेरी जिंदगी बहुत छोटी, तेरी जिंदगी चुक जाएगी, किताबें नहीं जुड़ेंगी, तो तुझे ज्ञान करना हो तो अभी कर ले। लेकिन उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, इतनी किताबें हो गई, 60 साल का बूढ़ा आदमी इतनी किताबें इकट्ठी करने में लगा रहा तो ख्याल नहीं किया कि कितनी हो गई। आज जाके देखा तो घबरा गया, किताबें इतनी थी कि 60 जन्मों में पढ़ी नहीं जा सकती, तो बीमार पड़ गया। उसने गांव के बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि बड़ी कृपा होगी, मैं तो मर गया, 7 साल गंवा दिए और अब मौत करीब आती है और किताबें इतनी ज्यादा, तुम किस तरह संक्षिप्त कर दो तो बड़ा अच्छा, तुम सब पंडित लग जाओ, जो खर्च होगा मैं दे दूंगा लेकिन किताबें संक्षिप्त करो। पंडितों ने 5 साल लगाए किताबें संक्षिप्त की, आदमी और बूढ़ा हो गया, अब भी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो संक्षिप्त कर ले तो ज्ञान मिल जाए, और वक्त संक्षिप्त करने में जा रहा है। फिर वो किताबें लेकर आए तो 5 ऊंट तो लग जाए, इतनी किताबें थी, क्योंकि वो लाइब्रेरी तो उसकी इतनी बड़ी थी कि 5 ऊंट पे लग जाए। तो उसने कहा पागल हुई तो मुश्किल है, मैं कब पढ़ पाऊंगा, ये 5 ऊंट पे लगी हुई किताबें भी बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं हो सकता पढ़ना इनका, और संक्षिप्त करो। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष और लग जाएंगे। 5 वर्ष और लगे, वो और किताबें संक्षिप्त करके लाए, जब वो लाए तो वो बीमार मरणासन्न पड़ा था, चिकित्सक घेरे खड़े थे, 5 किताबों में संक्षिप्त कर लाए थे। उस आदमी ने सोचने कहा 5 किताबें मैं कब पढ़ूंगा, और संक्षिप्त करो क्योंकि मुझे ज्ञान पाना है। उन्होंने और संक्षिप्त की, लेकिन अब की बार जब वो आए तब वो बेहोश हो गया था और चिकित्सकों ने कहा कि घड़ी दो घड़ी का मेहमान। वो 5 पन्नों में संक्षिप्त करके लाए थे, पर 5 पन्ने भी बहुत ज्यादा थे, चिकित्सकों ने कहा 5 पन्ने कब पढ़ पाओगे, ये तो मरा अभी मरा, और संक्षिप्त करो। उन्होंने और संक्षिप्त किया, तब वो 5 शब्द लेके आए, लेकिन तब वो आदमी बिल्कुल मरने के कगार पे था, 5 शब्द नहीं कह पाए, उसके कान में 1 शब्द कह पाए, वो बेहोश था, लेकिन तब उसने सुना भी नहीं होगा। कोई कहता है उन्होंने कहा परमात्मा, कोई कहता है मोक्ष निर्वाण, कुछ भी कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर जो जुटा रहा है। एक हार्ट कहता था कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी जिएंगे कभी इसकी व्यवस्था में गंवा देते हैं। जी नहीं, लक्ष्यहीनता ही जीवन है, क्यों? हाँ ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नहीं कह सकते इसलिए कि लक्ष्य होता है सदा भविष्य में, लक्ष्य होता है सदा भविष्य में, और जीना होता है सदा अभी, और अभी और भविष्य का कोई मेल कहीं नहीं होता। कह सकते हैं कि जीवन ही लक्ष्य है, ऐसा खतरनाक है, क्योंकि लक्ष्य का ख्याल होता है आगे से कभी होगा जो, और जीवन है अभी, लक्ष्य होगा कहीं समवेयर और जीवन है यहां, उन दोनों के बीच कोई मेल नहीं।
एक्चुअली कहें तो कह सकते हैं, हर्जा नहीं है कहने में, लेकिन खतरनाक है कहना, क्योंकि वो पुराना भाव फिर ख्याल में आ जाता। और दूसरी बात जो आप कहते हैं कि लक्ष्यहीनता मृत्यु नहीं, नहीं, बस लक्ष्य की खोज ही मृत्यु है, और लक्ष्य की खोज में जीवन खो जाता है।
और विकास तो
ना, ये हमें लगता है, ये हमें लगता है, क्योंकि हमारी जो धारणा है वो ये है कि जब तक लक्ष्य का तनाव हमें खींचने को ना हो तब तक विकास होगा ही नहीं। एक छोटी सी कहानी को आपको कल्याण जी ख्याल में लेनी चाहिए। एक रात तानसेन विदा हुआ है अकबर के दरबार से, सीढ़ियों पर अकबर उसे छोड़ता है और सीढ़ियों पर हाथ पकड़कर रोक लेता अकबर की आंखों में आंसू, और वो उससे कहता है कि तू कैसा अद्भुत आदमी, पृथ्वी पर तेरे जैसा कभी कोई हुआ है संगीतज्ञ? है कोई? कई बार मेरे मन में सवाल उठता है कि तुझसे भी बेहतर किसी ने गाया बजाया होगा। और कल से मैं बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि रात मुझे एक और ख्याल आया, हो सकता है तूने भी किसी से सीखा हो, कोई तेरा गुरु हो, तेरा कोई गुरु है? तानसेन ने कहा मेरे गुरु सीखा, वो है अभी। तो अकबर ने कहा कभी उन्हें बुला दरबार में और हम उन्हें सुने। तानसेन ने कहा ये जरा मुश्किल, क्योंकि वे तब नहीं गाते जब कोई कहे कि गाओ, किसी को सुनना हो तो तब सुनना पड़ता है जब वे गाते, क्योंकि वे कहते हैं कि जब किसी ने कहा गाओ तब कैसे गाया जा सकता है। जैसे किसी ने कभी कहा कि करो प्रेम, तब कहीं प्रेम किया जा सकता है? फिर अभिनय हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। तो वो नहीं गाते नहीं होंगे कहने से, कभी गाते हैं तो उन्होंने कहा फिर कैसे होगा, मैं पता लगाता हूं वो कब गाते, जब गाते तब हम चले, वो बंद करो, छिप के सुनना पड़ेगा। उनको छिप छिप के मैंने सीखा है, और सच तो ये है कि सीखना सब छिप छिप के होता है, वो इतना डेलिकेट मामला है कि आमने सामने थोड़ी होता है, एकदम छिप छिप के होता है, किनारे किनारे से बच के होता है। और जो लोग आमने सामने देखने के आदि होते हैं वो कभी नहीं सीख पाते, वो बिटवीन द लाइन्स होता है, और जो लाइन्स ही पढ़ने के आदि होते हैं वो चुप जाते हैं। उसने कहा छिपके, और तानसेन ने कहा कि पता लग गया है, वो तीन चार बजे रात उठते हैं, जमुना के तट पे रहते हैं, वहीं झोपड़ी के पीछे हम छुप जाएंगे रात दो बजे, जब वो गाएंगे तब सुन लेंगे। शायद ही अकबर की हैसियत के किसी सम्राट ने चोरी से किसी फकीर का गीत सुना हो जाके अकबर छिप गया दो बजे रात, तानसेन और एक दो मित्र, और तीन बजे के करीब हरिदास ने गाना शुरू किया, वो अपने इतारे पर गा रहे हैं और झोपड़े में नाच रहे हैं। फिर गीत बंद हो गया, वो स्नान करने चले गए, फिर रथ में वापस लौटे, महल तक अकबर कुछ बोला नहीं। सीढ़ियों पर उसने कहा तानसेन से कि मैं तो सोचता था कि तुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकेगा, अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, तू तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना फर्क क्यों है? का फर्क इसलिए कि मैं गाता हूं बजाता हूं कोई लक्ष्य है, कुछ पाने का ख्याल है। वो गाते हैं और बजाते हैं और खत्म हो गई ये बात, कुछ पाने का ख्याल नहीं, वो मालिक मैं गुलाम, वो जो लक्ष्य है वो मेरी गुलामी बना हुआ है, वो जो मुझे मिलना चाहिए वो मेरी नजर, मेरे प्राण तो उसमें लगे हैं, यहां मेरा प्राण ही नहीं है, जब मैं बजा रहा हूं तब मेरे मुर्दा हाथ बजा रहे हैं, मेरे प्राण तो वो जो मिलेगा उसमें, जो आंखों में दिखेगा, जो आदर जो सम्मान जो धन जो प्रतिष्ठा उसमें है, तो मैं बिल्कुल मुर्दा बजाता हूं। उनका बजाना बड़ा जीवन है, क्योंकि कुछ पाना नहीं है, न किसी को आंख का सवाल है न किसी के सम्मान का, कि हम कैसे सोच सकते कि ऐसा भी कोई आदमी हो जो बिना कारण बजाता हो। तो तानसेन ने कहा कि मैंने उनसे कभी पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि दो तरह का बजाना है, एक तो वो बजाना है जिसके बजाने से आनंद मिलने की कल्पना है, और एक वो बजाना है जो आनंद के मिलने से निकलता है, एक वो बजाना है जो आनंद के मिलने से निकलता है, क्योंकि अब आनंद भी तो बैठेगा ना, तो फिर बजेगा कुछ होगा। तो एक तो वो विकास है फीवरिस बुखार से भरा हुआ जो लक्ष्य के टेंशन से पैदा होता है, वो वैसे ही जैसे कोई किसी बैल के गले में रस्सी बांध के खींच रहा है, तो बैल खींच रहा है। और बैल ये भी कह सकता है कि अगर कोई रस्सी में नहीं खींचेगा तो फिर चलेगा कैसे? ये बात ठीक है, बैलगाड़ी में नहीं चलेगा, लेकिन जंगल में बैल का अपना एक चलना भी है, तो बैलगाड़ी का कोई लेना देना नहीं। तो एक फीबरस डेवलपमेंट है हमारा, जिसमें बुखार है और आगे का लक्ष्य रस्सी की तरह बंधा हुआ है, वो हमें खींचे चला जा रहा है। और ऐसे हम विकास कहते हैं, ये विकास नहीं, ये सिर्फ बुखार है। विकास तो वो है जो अत्यंत सहज है, जिसमें आगे कोई खींच नहीं रहा, पीछे कोई धक्के नहीं दे रहा, बल्कि फूल खिल रहा है, क्योंकि कली फूल बनेगी ही, करोगे क्या? उस तरह से जो विकास होता है वो भी एक विकास है। वो इसलिए नहीं होता कि आगे कुछ ना, बल्कि जो हमें मिलता जाता है वो हमारे भीतर नए नए फूल खिलाता चला जाता है। जो जो होता चला जाता है वो नए नए फूल खिलाता जाता है। फूल खिलते हैं, लेकिन उन फूलों के खिलने की कोई कामना नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, फूल तो खिलते हैं, विकास तो होता ही है। बल्कि मैं मानता हूं यही विकास है, क्योंकि इसमें बुखार नहीं है, अत्यंत स्वस्थ और शांत और साइलेंट और सहज। आदमी भर को ख्याल है ये कि विकास जो है वो तनाव से होगा, और वो गलत शिक्षा का ख्याल है। कह सकते हैं
आप ऐसा नहीं समझते कि जो अच्छे प्रतिभावान लोग हैं अगर सब लोग इस विचार को फॉलो करें?
ये तो मैं कह नहीं रहा,
नहीं, लेकिन अल्टीमेट तो यही
ना, मैं कहता हूँ मिलेगी, हजार लाख गुना होके मिलेगी, और बीमार नहीं होगी, स्वस्थ होगी, सहज होगी, सरल होगी। एक तो ऐसा भी है कि कली को जबरदस्ती भी खोल के फूल बनाया जा सकता है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं, आप पकड़ के खोल दें तो भी कली खिल जाएगी, तो भी फूल दिखेगा। लेकिन एक वो भी कली जो खिलती है और फूल आता है, इन दोनों में बुनियादी फर्क है। एक फूल के खिलने में सहज, और एक फूल की कलियों को जबरदस्ती खिला देने में, हो सकता है धोखा हो जाए।
परंतु आप ऐसा नहीं मानते कि आप उस लक्ष्य चिंता को छोड़ के एक बिगर सैक्रीफाइस करते हैं जब आप दुनिया को कुछ देते हैं?
ना, मैं ये कह नहीं रहा, तो ये कह रहा हूँ कि फीबरिस आदमी दुनिया को कुछ दे ही नहीं पाता, सिर्फ अपने फीवर को संक्रमित कर जाता है।
लेकिन उस स्टेज पे पहुंच गए
जरूर,
उसके बाद एक बिगर सैक्रीफाइस नहीं होता कि आप अपनी पर्सनल हैप्पीनेस लूज करके और कुछ दें दुनिया?
हाँ, मैं आपकी बात समझा। असल में सेक्रीफाइस बहुत गंदा शब्द है, त्याग शब्द ही बहुत बेहुदा है। और जब आप कहते हैं त्याग, तभी आप दूसरे को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जब आप कहते हैं सेक्रीफाइस, तभी आप हावी होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, वैसी सहज खिली हुई प्रतिभा भी बहुत कुछ देती है, लेकिन देने में कोई सेक्रीफाइस नहीं है, देने में भी आन। और मैं ये कहता हूं कि देने को सेक्रीफाइस बनाना ही गलत है, और अगर सेक्रीफाइस करके देना पड़े और दुख से देना पड़े, तो मैं मानता हूं जो दुख से दिया जाता है वो कभी आनंद पैदा नहीं कर सकता, वो बहुत गहरे में दुख की ही प्रतिध्वनियों को बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन जो आनंद से दिया जाता है, और आनंद से ही दान हो सकता है, लेकिन तब दान बिल्कुल मूक है, और तब दान देने वाले को पता भी नहीं है कि मैंने दिया। यही होगा कि दान देने वाला दान दाता तो बनेगा ही नहीं, सेक्रीफाइस का तो सवाल ही नहीं है, अनुग्रहित होगा उसका जिसने ले लिया, क्योंकि उसके आनंद को बटने का मौका नहीं था ना, किसी ने बांट लिया। जब आप फूल के किनारे से निकलते हैं, अगर बट गई, अगर फूल कह सके तो अनुग्रहित होगा, धन्यवाद देगा, धन्यवाद। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था, रास्ते से कोई नहीं निकलता, सुगंध गिरती रहती, कोई पहचाना, तो धन्यवाद दे सकता है। जो महानतम दान है वो त्याग से नहीं होता, वो आनंद से ही होता है। लेकिन हम सब इतने दुखी लोग हैं कि हम आनंद की भाषा नहीं समझ पाते, हम त्याग की भाषा समझ पाते। तो मां अपने बेटे से कहती है कि तू अपना त्याग कर मेरे लिए, उसने त्याग किया अपने पति के लिए, उसका पति त्याग कर रहा है बेटों के लिए, बेटे त्याग कर रहे हैं बहनों के लिए, सारी दुनिया एक दूसरे के लिए त्याग कर रही, और एक चक्कर पैदा हो गया, और उसमें सब दुखी। व्यक्ति का सबसे बड़ा काम यह कि वो आनंदित हो जाए, और उसके आनंद से बहुत कुछ बटेगा चारों तरफ, फैल जाएगा चारों तरफ, लेकिन न तो त्याग होगा और न त्याग का खतरा होगा, क्योंकि जिस आदमी ने भी त्याग किया वो आपको टार्चर करेगा। त्याग बड़ा टार्चरिंग है। अगर मां ने कहीं ये कहा कि बच्चे मैंने तेरे लिए 9 महीने पेट में रखा, बड़ा त्याग किया, ले ली जान उसने बच्चे की, इस बच्चे को मार डालेगी, वो जिंदा नहीं रहने देगी। अगर उसने ये कहा कि मैंने तुझे दूध पिलाया, तुझे बड़ा किया, तू रोया, तेरा सब सेवा की, इतना मैंने त्याग किया, तो पहली तो बात ये माई नहीं
है।
हाँ वही तो मैं उनसे कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ, जो कहा जाए वो नहीं, जो अनुभव भी किया जाए। असल में त्याग का अनुभव ही गलत बात है। अगर मेरे आनंद से हुआ तो बात क्या है, त्याग कहाँ है। अगर मैंने 2 घंटे जाके किसी फूल पर पानी डाला और वो मेरा आनंद था तो त्याग नहीं है। और अगर मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसके पास रात भर बैठा रहा, वो बीमार है, तो त्याग नहीं है। त्याग क्या है, ये मेरा आनंद है। और वो जो आप कहते हैं ये तो एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, बिल्कुल ही ठीक कहते हैं। असल में अगर प्रत्येक व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वार्थी हो जाए तो दुनिया की सब बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मजा ये है कि कोई और परम स्वार्थ में सब परार्थ हल हो जाता है सहज जी, क्योंकि जब मैं परम स्वार्थ में उतरता हूं तो मैं करूंगा क्या, मैं अपना आनंद ही खोजूंगा ना। और ध्यान रहे कि जिस दिन भी मैं अपने आनंद को जीने लगता हूं उस दिन मैं आनंद ही बांटूंगा, करूंगा क्या। दुखी आदमी दुख बांटता है चाहे कहे कुछ भी, क्योंकि जो हमारे पास है वही हम बांट सकते हैं और कुछ बांट भी नहीं सकते। तो इधर मैं ऐसा सोचता हूं, लक्ष्य से मुक्त, त्याग से मुक्त, स्वार्थ परार्थ की भाषा से मुक्त, सिर्फ जीने के आनंद में प्रफुल्लित व्यक्ति अगर खिले तो उसकी सुगंध बहुत बटेगी, क्योंकि उसमें सुगंध होगी। इसमें तो सुगंध हो ही नहीं सकती जिसको आप कह रहे हैं, उससे बहुत दाम मिलेगा। लेकिन हमारी जो दुनिया है जो हमने बनाई है दुख पर खड़ी है, और दुखी चित्त आधार है, और दुखी चित्त सिर्फ दुख की भाषा में सोच सकता है, और इसलिए हम कई बार पहचान भी नहीं पाते। अब जैसे कि महावीर है वो नग्न खड़े हो गए, तो जैन ग्रंथों में लिखा है, जैन गुरु समझाते हैं कि उन्होंने बड़ा त्याग किया, कपड़े छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी। तो मैं मानता हूं इससे ज्यादा ना समझे की बात नहीं हो सकती। महावीर को नग्नता इतनी आनंद रही होगी, महावीर को नग्न होना ऐसा आनंदपूर्ण रहा कि छोड़ गए कपड़े। अब लोग कह रहे हैं कि त्याग किए, वो लोग कह रहे हैं जो नंगे खड़े होने में कोई आनंद नहीं देख पा रहे, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो नंगा खड़ा होना बड़ा दुख हो जाए, और ये आदमी नंगा खड़ा हो गया, हमें लग रहा है कि त्याग किया, ये हमें लग रहा है। और महावीर ने अगर महल छोड़ दिया तो हमें लग रहा है कि भारी त्याग किया, क्योंकि महल, क्योंकि हम तो उस महल की कामना किए बैठे हैं कि मिल जाए। और महावीर को हो सकता है कि महल की दीवारें कारागृह बन गई हो, और वह आदमी सिर्फ कारागृह से निकल पाता है। और महावीर से जब किसी ने कहा कि आपने इतना छोड़ा, तो उन्होंने कहा छोड़ा, कोई आदमी अपने घर हम नहीं थे उसने कुछ छोड़ा, जो मुझे कचरा दिखने लगा वो छूट गया, जो मुझे आनंदपूर्ण था वो मैं। अपना अपना आनंद, अपना अपना आनंद। और अगर आनंद नहीं है तो खतरनाक है वो आदमी, खतरनाक आदमी अगर त्याग किया तो। वही मैं कह रहा हूँ, गांधी का सवाल नहीं है, अगर वो आनंद नहीं है उनका, अपना आनंद है उनका।
मैंने उसमें आनंद क्या, उनके सामने लगता है गांव के इतने लोग मंजूर रहते हैं उनके।
हाँ अगर वैसा है तो गांधी खतरनाक आदमी है, खतरनाक आदमी, समझे ना। वो गर्दन पकड़ लेंगे फिर तो बहुत सताएंगे, वो कई को सताएंगे, गुरु लोग इस तरह सता रहे हैं।
वो क्या अनुभूति है की वजह से सब परिवर्तन हो गया, सब बदल गया, कैसे आई, आपका प्रयास था या कहीं अनकॉन्शियस थे, सब कॉन्शियस
नहीं। वही मैंने कहा, वही मैंने कहा, अब इसे आखिरी बात मान लेना।
हाँ जी,
तो वो जो मैंने कहा ना कि मेरा प्रयास तो एक ही था कि जो मैं नहीं जानता हूं वो ना मानूं, किसी को पकड़ू ना, किसी बात को सत्य ना मान लू, किसी विचार को स्वीकार ना करूं जिसे मैं न जान लू, क्योंकि सब हाथ मान्यता से भरे, पूरी खोपड़ी हमारी मान्यता से भरी। एक लड़की मुझे प्रेम करती थी, यूनिवर्सिटी में था, उसने मुझे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहूं। मैंने कहा तू कर सकती, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैं किसी को पत्नी नहीं मान सकता। मेरा भरोसा नहीं, क्योंकि मैं तुझे पत्नी नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसी कठोरता मैं कर ही नहीं सकता कि तुझे पत्नी मानू, मैं तुझे गुलाम नहीं बना सकता। और मैं कोई भरोसे का आदमी नहीं हूं, आज तो उससे कहता हूं कि प्रेम है, कल अगर प्रेम ना रहा तो कह दूंगा कि नहीं, जिस दिन नहीं होगा उस दिन नहीं कहूंगा कि है, फिर ढूंढ नहीं रचा सकूंगा, फिर कल विदा सकते हैं, फिर वो दोबारा लौट ही नहीं सकते। क्योंकि हम तो सारा मान्यता पर सारा जो मामला है ना, पक्का भरोसा करके, आगे का इंतजाम करके, सिक्योरिटी करके, हमारे सब विश्वास भी सिक्योरिटीज है। भगवान को मानो, मोक्ष को मानो, नर्क को मानो, कर्म को मानो, सब सिक्योरिटीज है, पाप को मानो, पुण्य को मानो, तो कोई सुरक्षा मैंने नहीं मानी। और वो विस्फोट जो आया वो असुरक्षित होने से आया, वो जो टोटल इनसिक्योरिटी पैदा हुई उससे आया।
क्या था
ये कहना बहुत मुश्किल मामला है कि वो क्या, वो क्या। ऐसे ही जैसे कि समझने के एक झरने पर पत्थर रखा हो, बिखर के फूट जाए, अलग हो जाए, और झरना फूट पड़े पीछे से, जो कि था ही, जो कि है ही सब में, और हमने जो मान्यताएं पकड़ रखी वो पत्थरों की तरह चारों तरफ से उस झरने को रोके हुए। और अगर हम तैयार हो जाएं मान्यता के त्याग को, बिलीफ को, तो पत्थर हट जाते हैं और झरना फूट पड़ता है। अब वो झरना कैसा, ये इतना ही मुश्किल मामला, जैसे कि किसी आदमी ने आंखें ना हो उसकी और उसने प्रकाश ना देखा हो, अब वो पूछने लगे प्रकाश, और कोई आदमी उसे कहे कि घर में दिया जला है मेरे, और दिए में सब दिखाई पड़ता है, वो आदमी कहने लगे ये तो सब ठीक है लेकिन दिया जला है। कहानी निरंतर कहता हूं कि रामकृष्ण कहते थे कि आदमी गया है अपने मित्र के घर, वो अंधा है, उसने खीर बनाई है, और अंधे ने पूछा कि ये खीर कैसी है, ये क्या है, किस चीज से बनी, तो मित्रों ने कहा कि दूध से बनी, पूछा कि पहेली मत उलझाओ क्योंकि मुझे खीर का ही पता नहीं है और दूध का भी मुझे पता नहीं, तुम कहते दूध से बनी, अब और एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि दूध क्या है, तो उन्होंने कहा दूध बिल्कुल सफेद होता है, शुभ्र, कही शुभ्रता मुश्किल में डाल दिया, मैं तो मर गया, वो खीर तो वही रही, दूध भी वही रहा, अशुभ्रता क्या है, कुछ ऐसा समझाओ कि मैं जरा समझ जाऊं। तो एक मित्र ने कहा कि शुभ्रता, बगुला देखा है कभी, तो बगले की तरह सफेद पंख, बस वैसी सफेद दूध होता है। उस अंधे आदमी की आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा कि तुमने तो मेरी मुश्किल कर दी, बगुला देखा है कभी, बगुला तो देख ही नहीं, बगुला तो कभी देख ही नहीं, कुछ ऐसा बताओ, अंधे का मजाक मत करो, कुछ ऐसा बताओ कि मैं समझ जाऊं। तो एक मित्र पास आया, उसने हाथ उठाया और कहा मेरे हाथ में हाथ फिर, अब तो तेरी समझ में आता कुछ, हाथ पे हाथ फेरा उसने, उसने कहा इसका मतलब क्या है, स्पर्श हो रहा है तुम्हारे हाथ का, सुडौल है बहुत, तो उसने कहा बगले की गर्दन ऐसी होती है सुडौल हाथ की तरह। अंधा खड़े होकर नाचने लगा, उसने कहा जान गया कि दूध कैसा होता है, सुडौल हाथ की तरह ना। और मित्र कहने लगे क्षमा कर ये बात मत कर, ये तो और मुश्किल हो गई, इससे तो वही ठीक था कि तू जानता था कि नहीं जानते, ये तो और झंझट हो गई, हम कुछ ना समझा पाए। असल बात यह है कि विस्फोट तो है अनुभव, और ऐसा अनुभव है जिसके लिए कोई पैरेलल जीवन में नहीं है, कोई पैरेलल जीवन में नहीं है,
क्षण में होता है
बिल्कुल ही एक क्षण में, धीरे धीरे, कभी भी नहीं, इसलिए विस्फोट कह रहा हूं। एक्सप्लोजन कहने का कारण ही कुल इतना है कि वो कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा धीरे धीरे होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीजें हो सकती हैं जो खंड खंड की जा सके, जैसे प्रेम धीरे धीरे नहीं हो सकता, और धीरे धीरे जो हो वो प्रेम नहीं, सिर्फ लाइकिंग होता है, धीरे धीरे जो होता है वो सिर्फ पसंद है, वो धीरे धीरे एक आदमी के साथ रहते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं। और जिन मुल्कों ने विवाह ईजाद किया उन्होंने इसी तरकीब पे ईजाद किया कि दो को साथ कर दो, वो धीरे धीरे पसंद करने लगेंगे। और दूसरों के साथ का उपाय मत दो ताकि उनको पसंद करना ही पड़े, इसलिए दूसरे की पत्नियों से दूसरों की लड़कियों से मिलने का उपाय बंद कर दो ताकि साथ रहना पड़े, और साथ रहने से संग हो, संग से पसंदगी हो, पसंदगी से प्रेम मालूम होने लगे। और विवाह के बाद प्रेम मालूम होते नहीं, क्योंकि विवाह के बाद एक ग्रोथ है जो पसंदगी की है। प्रेम तो एक विस्फोट है जो एक क्षण में घट जाता है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं। और ऐसा ही ज्ञान है कि अब अज्ञान कम होते होते ज्ञान आ गया ना, ऐसा नहीं होता। जब मैं माचिस जलाता हूं तो ऐसा नहीं होता कि पहले थोड़ा अंधेरा बाहर जाता है, फिर और थोड़ा अंधेरा बाहर जाता है, फिर और थोड़ा अंधेरा बाहर, ऐसा नहीं होता। माचिस जल ही क्या, अंधेरा नहीं है इसमें, इसमें इतना ही विस्फोट है। लेकिन विस्फोट क्या है ये विस्फोट करके ही जानना पड़े, इसमें सातों उपाय। तो उसके लिए मैं कहता हूं कि कभी 10-5 मित्रों को लेकर 10-15 दिन के कहीं भी एकांत में चल के रहे, विस्फोट की प्रतीक्षा करें, हो सकता है, बिल्कुल। यानी मेरी तो सारी कोशिश ही वो है, मेरी सारी कोशिश ही वो है कि वो विस्फोट का हाँ बस ख्याल में आ जाए कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, बल्कि तैयार हमारे भीतर सबके और नहीं हो पा रही, इससे हम बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं। क्योंकि कोई चीज, कोई झरना भीतर से फूटना चाहता है और सब तरह से पत्थर दबा दिए, और वो झरना हमारी जिंदगी है। और जितनी सभ्यता बढ़ती जाती है उतने पत्थर बढ़ते चले जाते हैं और वो झरना दबता चला जाता है। इसलिए सभ्यता पागल करती है आदमी को, सभ्यता आत्महत्या लाती है, क्योंकि वो झरना कहता है कि मुझे निकलने दो और हम सब दबाते चले जाते हैं। तो पत्थर क्या है ये समझाया जा सकता है, वो हमारी पहचान है उससे, और पत्थर हट जाए तो विस्फोट होगा, लेकिन वो होगा तो ही ख्याल में आता, उसके ध्यान नहीं आता।